Guruji is very much involved in preaching a lot online. He regularly teaches courses on Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, etc. And group of devotees in India as well as abroad. Apart from his wonderful reading of Srila Prabhupada books, he is a grahastha with a wife, and he stays at his house in near Juhu. And because Juhu is very close to him, he's called Juhu Temple, so he visits every day Juhu Temple. And Juhu Temple devotees know him as one devotee who will sit down for his sadhana. A grahastha sit down for a sadhana, complete all his 16 rounds at a stretch and then go home. It's a unique thing. He is very good in sadhana, very good in books. And the most important thing for which he is well known all the world is for his book distribution. He is number two in distribution of Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam sets. Distribute one Bhagavad Gita is so difficult, right? What to speak of distributing Bhagavatam set? How many Bhagavatam sets last time in marathon we did? 251 Bhagavatam sets alone. So we thought that let him come, and this is the beginning of his seminars. Today he is going to cover a wonderful topic, reading Srila Prabhupada's books and glories of Srila Prabhupada's books. And eventually, as if you like it, you can come next seminar, but he'll speak on how he can share his wonderful techniques and ideas of how he distributes Srila Bhagavatam sets of Srila Prabhupada. So let us welcome Premaras Prabhu to our seminar here, but three times loudly chanting.
Hare Krishna. So seeking the blessings of each and every Vaishnava who have assembled here. And I wanted to know one thing, that how many of you know English only? You know only English. Okay. So how many of you know Hindi only? Okay, okay. Kitne logo ko sirf Hindi pata hai? हिंदी आता है. कितने लोगों को इंग्लिश आता है? सिर्फ सिर्फ कितने लोगों को इंग्लिश आता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों. सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू, स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? बोथ. ओके, ठीक है. क्योंकि प्रभु जी ने एक्चुअली हिंदी में बोला था बोलने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा. मेरा हिंदी इतना एक्चुअली स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश भी होगा. इसके लिए आप थोड़ा टॉलरेट करना उसके लिए, ठीक है. सो बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि प्रभुपाद के बुक्स के बारे में है. सो हम चाहते हैं कि हर एक डिवोटी जो है, जो भी इस्कॉन से कनेक्टेड है, क्योंकि प्रभुपाद उसके फाउंडर आचार्य है, इसके वजह से हर डिवोटी को श्री प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना चाहिए. इट्स लाइक मैंडेटरी, इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी. आई वुड नॉट से इट इज मैंडेटरी, बट इट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ. अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है. और वो क्यों पढ़ने पड़ेंगे वो हम लोग सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये कंटेंट है आज के सेमिनार का, अस्टाउंडिंग प्रभु पास्ट टाइम्स ऑफ प्रभुपाद. तो एक्चुअली मैं शिला प्रभुपाद की जितने भी लीला हुई है, अनलिमिटेड लीला है वैसे, और सभी लीला अस्टाउंडिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मैंने सिर्फ चार पाँच लीला शेयर की है, क्योंकि वो थोड़े बहुत बुक से कनेक्टेड है, उनके बुक से कनेक्टेड है, और वो आपको कन्विंस कर सकता है कि प्रभुपाद कौन थे, कौन यू नो एज अ आचार्य कौन है वो, और क्यों उनके बुक्स पढ़ने चाहिए. फिर अबाउट श्रीला प्रभुपाद बुक्स, कि क्या स्पेशल और यूनिकनेस है श्रीला प्रभुपाद के बुक्स के बारे में. तीसरा, वाई रीड प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद के ग्रंथों को क्यों पढ़ना चाहिए हम लोग को. चौथा है एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ हियरिंग. सो हियरिंग क्यों जरूरी है. ओके, चैलेंजेस टू रीड प्रभुपाद बुक्स, मतलब ठीक है आप सब लोग कन्विंस हो गए हो कि प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने चाहिए, लेकिन उसमें क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ने पॉइंट्स किए हैं. और फिर उसको ओवरकम करने के लिए जो मेथड है, जो मूड है प्रभुपाद बुक्स पढ़ने के लिए, जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम लोग ने डिस्कस किया इसमें. एंड देन कैन वी रीड अदर बुक्स बाय अदर आचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि क्या हम दूसरे ग्रंथ पढ़ सकते हैं दूसरे आचार्यों के, और दूसरे इस्कॉन डिवोटीज के भी पढ़ सकते हैं कि नहीं. और फाइनली हमको क्या, जो जो जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका एक श्रुति फल होता है, तो प्रभुपाद बुक्स पढ़ने से उसका क्या फल होता है, वो हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. ओके. अच्छा, अभी ये 8 टॉपिक्स है, हम लोग एक एक टॉपिक करके जाएंगे ग्रेजुअली. किसी को अगर कुछ प्रश्न होगा, वैसे एक्चुअली मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकली माइंडेड पहले से हूँ, इसके लिए जो भी आप क्वेश्चन भी पूछोगे वो मैंने डाल के रखा है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस है तो फिर आप हर एक टॉपिक के एंड में हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं और तभी आप पूछ सकते हो. श्रील प्रभुपाद की. सो ओके, सो अस्टाउंडिंग बात से श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद की बहुत उत्साहिक सब जितने भी लीला है उसमें से थोड़े हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो एक्चुअली मैं रामानुजाचार्य, जो वैष्णव आचार्य हमारे मध्वाचार्य है, और जो थोड़े बहुत डिवोटीज हैं उनके परंपरा में, उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रेडिक्शन के बारे में क्या बोला है, ऑल्दो डायरेक्टली प्रभुपाद का नाम नहीं लिया है, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने क्या बताया था. तो रामानुजाचार्य ने बताया, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य है, प्रमुख आचार्य, उन्होंने बताया था कि एक कलयुग में एक ऐसा दिन आएगा जब सब लोग जो भक्ति जो है, वैष्णव जो कल्ट है और जो भक्ति कल्ट है, बिना कर्म और ज्ञान के सिर्फ शुद्ध भक्ति फैलाई जाएगी. विदाउट आई मीन कर्म और ज्ञान के बिना भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति भगवान की फैलाई जाएगी, और वो एक बनियन ट्री की तरह, मतलब जो केले का जो पौधा है, पेड़ उसकी तरह वो इंक्रीज होगा, एक्सपांड होगा, ग्रो होगा. तो ये रामानुजाचार्य ने प्रेडिक्शन किया था, उनका मैं आपको बता रहा हूँ. फिर मध्वाचार्य जी जो है, उन्होंने जो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, तो उन्होंने बताया था कि जो सच्चा ज्ञान है भगवान और भक्तों में जो अंतर है, या फिर भगवान और जीव में जो अंतर है, और भगवान की भक्ति के बारे में जो सच्चा ज्ञान है, वो कलयुग में फैलाया जाएगा हर दुनिया के हर एक कोने में. तो ये मध्वाचार्य जी ने प्रेडिक्ट किया था. और जो भी रामानुजाचार्य ने और एक चीज बताई थी कि जो भी उस पेड़ में आश्रय लेगा उसको सभी रियल ज्ञान, मतलब जो सच्चा ज्ञान है, उसका फल मिलेगा. और रामानुज संप्रदाय में और एक आचार्य है, उनके वन ऑफ द 12 सेंट्स, उसका नाम है विष्णुचित. उन्होंने बोला था कि एक ऐसा समय आएगा जब भी एक रेस आएगा जहाँ पे जो रेस जो होगा वो ट्रेड करेगा पूरे अर्थ को विथ वर्टिकल तिलक्स एंड रेस्ड हैंड्स. दे विल चैंट द नेम ऑफ हरी एंड By this, they will destroy the influence of Kali. So, ऐसा एक पंथ आएगा आगे जाके, जो तिलक लगाएंगे, जो वर्टिकल होगा, मतलब जो यू नो खड़ा, और लोग हाथ ऊपर करके हरि का नाम लेंगे, हरि नाम संकीर्तन में, और हर जो कलयुग का जो प्रभाव है उसको, उसका नाश करेंगे. तो ये विष्णुचित जो है उन्होंने बताया था. फिर एक प्रतिसर्ग जो सेक्शन है भविष्य पुराण का, उसमें लॉर्ड जगन्नाथ, हमारे जगन्नाथ जी खुद बताते स्वयं कि कलयुग में शूद्र मलेच्छा यावना वो लोग हरि नाम लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, तिलक लगाएंगे, और ब्राह्मण का जो थ्रेड होता है वो पहनेंगे, और हर जगह पे भक्ति फैल जाएगी. और किस तरह से मुझे वर्शिप करेंगे, उन्होंने कहा कि जो यज्ञ जो कलयुग में है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु दिए हुए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वो मुझे पूजेंगे. तो ये जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ ने स्वयं भविष्य पुराण में वो इसकी ये की है वाणी. और फिर पद्म पुराण में भी जो भक्ति देवी है, उन्होंने नारद मुनि से कहा, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गुण्यत मय. उसका मतलब है कि मैं भारत को छोड़ के दूसरों देश में जाऊंगी कलयुग में. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे रेफरेंसेस अगर हम ले, और तो ये किसी एक ही आदमी ने सच किया है पूरी दुनिया में, और वो कौन है? श्रील प्रभुपाद. इंडिया में तो काफ़ी वैष्णव आए, आचार्य आए, और उन्होंने भक्ति का जो मार्गदर्शन जो है वो फैलाया भारत में, लेकिन पाश्चात्य देश में केवल एक ही आचार्य ने किया है और वो है श्रील प्रभुपाद। किसी को कुछ शक है इसके बारे में? कोई डाउट? किसी को गूगल करना है? नहीं। व्हाट्सअप फाइंड किसी को करना है? नहीं। ओके, सो आई थिंक एवरीवन एग्रीज ऑन दिस पॉइंट। ओके, सो ये प्रेडिक्शन जो है मैंने शेयर किए थोड़े, ऑब्वियसली ये लीला नहीं है लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। हाँ, अभी दूसरी ये जो है कि जो सारे वैष्णव आचार्य है, अभी ये मत समझना कि प्रभुपाद जी जो है अलग से एक आचार्य है और सारे वैष्णव आचार्य है जो उनसे भिन्न है। नहीं, सारे वैष्णव आचार्य एक्चुअली में चाहते थे कि प्रभुपाद जाए और उनको रिप्रेजेंट करे कलयुग में और हरिनाम संकीर्तन फैलाए। तो इसमें एक ऐसी लीला है कि एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य है आत्मतत्व प्रभु, शायद आप जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा। तो आत्मतत्व प्रभु जो है वो एक बार किसी को कृष्ण का पुस्तक बता रहे थे पुस्तक वितरण करने के समय पे। तो वो आदमी जो था वो फिजियोग्नोमिस्ट था। फिजियोग्नोमिस्ट का मतलब है जो आदमी आपके चेहरे को देख के बता सकता है कि आपका भविष्य क्या है या आप में कितना पावर है। तो और वो एट द सेम टाइम वो शैवाइट भी था, मतलब भगवान शिव का भक्त था वो। तो उसने वो बुक, कृष्णा बुक जो है वो उसको बताया और फिर उसने बताया कि भाई ये जो फोटो है कृष्णा बुक के जो कवर पे, ये हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी का है। और वो प्रभुपाद जी वो फोटो में एक चंपक फ्लावर उनके हाथ में था, उसको देख रहे थे। तो वो जो शैवाइट आदमी है वो बहुत गहराई से देखता है प्रभुपाद जी को, उनके फेस को। और फिर वो एक छोटा सा उसके पास एक बॉक्स रहता है, उसमें से वो थ्रेड निकालता है और भी कुछ सामान निकालता है। और फिर वो बारीकी से एकदम 10-15 मिनट तक प्रभुपाद के सारे चेहरे को मेजर करता है, उनके फोरहेड को, फिर उनके नाक को, उनके कान को, उनके मुंह को। और फिर थोड़े समय के बाद एनालिसिस करने के बाद वो कहता है कि ये आदमी में सारे चार वैष्णव संप्रदाय के आचार्य सभी इसी आचार्य में है समाये हुए हैं। ऑल फोर वैष्णव आचार्य आर प्रेजेंट इन हिम। ओके, दूसरी बात, फिर वो बोलते हैं कि एक्चुअली अगर आप मुझे प्रभुपाद जी का, आपके गुरु का, अगर आप मुझे फुल फॉर्म भेजोगे, अगर फुल फॉर्म अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं और बता सकता हूँ उनके बारे में। तो फिर वो इमिजिएटली प्रभुपाद जी का जो फुल फीचर है बॉडी का वो उनको आके देते हैं। तो फिर वो स्पेशली लेंस लाते हैं और वो लेंस से हर एक चीज़ बारीक बारीक तरीके से देखते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि एक्चुअली मैंने जो कहा था आपको पहले वो बिल्कुल सच है कि एक्चुअली मैं ये सारे चार वैष्णव आचार्य उनके थ्रू काम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की। और उन्होंने बोला कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप इस मूवमेंट में आपने ज्वाइन किया है और मैं भी करना चाहूँगा लेकिन नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में। तो आत्मतत्व प्रभु पूछते हैं कि क्यों, आप तो शैवाइट है, आपको तो भगवान शिव के धाम में जाना है। तो वो बोलते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ भगवान शिव के पास और उनको बताना चाहता हूँ कि ये कौन है, ये प्रभुपाद जी है और मुझे उनका मिशन ज्वाइन करना है और मुझे धर्म पूरे दुनिया में फैलाना है श्री प्रभुपाद की। और फिर वो बोलते हैं, वो उनको फ्री में दे देते बुक, कृष्णा बुक, क्योंकि वो और फिर वो बोलते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए क्योंकि ये बुक ने मुझे जो चेहरा पढ़ने का जितना मुझे खुशी और जो अनुभव दिया है किसी और बुक ने नहीं दिया अभी तक, श्रील प्रभुपाद की। तो ये प्रभुपाद के बारे में यूनिकनेस कि सारे चार वैष्णव संप्रदाय के आचार्य उनमें प्रेजेंट है, सो ही इज नॉट डिफरेंट। एंड व्हाट एवर प्रभुपाद सेड, ही हैज गिवन द फिलोसॉफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, अचिंत भेदाभेद तत्व जो उन्होंने दिया है चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसॉफी, वो एक्चुअली सारे संप्रदाय, चार संप्रदाय का उसको जोड़ के निकाला है, सिंथेसिस करके निकाला उसको, ठीक है। सो ये आत्मतत्व प्रभु ने शेयर किया है उनके मेमोरीज में। नेक्स्ट पास्ट टाइम, सो अभी सभी को पता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयत्न किया था हरिनाम फैलाने का, भगवान के बारे में संदेश देने का। 45 ईयर्स तक वो फेल हुए थे इंडिया में, राइट। उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन भी निकाला था और उसका खूब तरीके से उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की लेकिन इतना उनको नहीं मिल रहा था सक्सेस। फिर फाइनली जब उन्होंने संन्यास किया तब वो वृंदावन में गए। तो वृंदावन में वो राधा दामोदर टेम्पल में भजन कर रहे थे, करीब उन्होंने 6 साल तक भजन किया। उस भजन के दौरान एक गौड़िया मठ वैष्णव डिवोटी है जो प्रभुपाद के संग में थे, तभी बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस कि प्रभुपाद जी का कितना स्थान जो है वो एकदम यूनिक है। तो वो बता रहे थे कि मैं एक बार प्रभुपाद के पास गया, तभी वो थोड़े बीमार थे, तो मैंने उनको पूछा कि प्रभुपाद जी आप कैसे हो, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि थोड़ा सा आई हैव गॉट सम फीवर, लेकिन मेडिसिन लिया है तो क्योर हो जाएगा। प्रभुपाद का मेडिसिन तो आप जानते हो हरी नाम, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन यू नो नित्य सिद्ध के लिए क्या है मेडिसिन वही है। तो प्रभुपाद वो उनको बोले ठीक है आप रेस्ट ले लीजिए, और फिर और वो तभी वो समय पे भागवतम पढ़ रहे थे। फिर वो दूसरे दिन आए और उनको पूछा कि प्रभुपाद, और प्रभुपाद तभी बहुत खुश लग रहे थे, तो उनको पूछा कि प्रभुपाद आप तो आप एकदम हैप्पी हेल्दी और एकदम अच्छे लग रहे हो आज, आपका सेहत बहुत अच्छा हो गया अभी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि एक्चुअली वेल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस कल रात को ही एक्चुअली मेरे गुरु मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे प्रोत्साह किया था, तो मैं काफ़ी एंग्जाइटी में था कि मैं ट्रांसलेशन और कमेंट्री कैसे करूँगा भागवतम के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु महाराज आए उन सपने में और उन्होंने बोला कि यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड यू वर्क लाइक नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य एंड शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर, डोंट वरी, वंस यू स्टार्ट राइटिंग ऑल सिक्स गोस्वामीज, जितने भी सड़ गोस्वामी है वो खुद तुम्हें आके डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको कैसा पुस्तक लिखना है। श्रील प्रभुपाद की। सो उसके बाद तो ऑब्वियसली उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने सुना कि सारे गोस्वामी भी आएंगे और उनको गाइड करेंगे। अब ये तो हो गया एक लीला। उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद वापस गए प्रभुपाद जी के पास, और शिला प्रभुपाद जहाँ पे बताते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे शक्ति दी और मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं स्टार्ट कर दूँ। फिर थोड़े दिनों के बाद प्रभुपाद वापस हरिनाम बहुत डीपली एकदम एब्जॉर्प्शन के साथ एक्सटेसी के साथ कर रहे थे चैंट, टीयर्स आ रहे थे उनके, यू नो अश्रु बह रहे थे उनकी आंखों से, और फिर ये वापस आते। इनका नाम बाय द वे गोपाल चंद्र घोष है जिन्होंने ये शेयर किया पास्ट टाइम। तो वो आते हैं और फिर वो प्रभुपाद जी को खुश देख के, और फिर वो बोलते हैं कि प्रभुपाद प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए आपका खुशी का राज क्या है, व्हाट इज़ योर सीक्रेट टू भजन एंड योर हैप्पीनेस। तो प्रभुपाद जी ऐसा थोड़ा टाइम उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी फाइनली बोलते हैं एक्चुअली ऐसा कुछ बात नहीं है, सिर्फ कल रात को थोड़े विजिटर आए थे और उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी। तो उन्होंने पूछा कौन आया था, तो फिर वो प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं कि एक ट्रांसेंडेंटल एफल्जेंट पर्सनालिटी था जो, दिस इज ऑल यू नो नियर द रूप गोस्वामीज कोर्टयार्ड, ओके, रूप गोस्वामी के कोर्टयार्ड के वहाँ पे पास में। तो उन्होंने बोला कि भाई जिनकी आंखें जो थी वो कमल नयन की तरह थी, बड़ी बड़ी आंखें थी कमल की तरह, और उनका फेस जो था बहुत एफल्जेंट था, गोल्डन ह्यू कलर था, और करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थे, और उनके पास में जो बैठे थे वो थोड़े से बड़े थे उनसे उम्र में, और उनका भी ऐसे ही करिश्मेटिक और कैप्टिवेटिंग प्रभाव था। और उनके पीछे दो, ये दोनों के पीछे एक और एक छोटे से और एक पर्सनालिटी थे, उनका भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो उन्होंने पूछा कौन थे ये, प्रभुपाद बोले रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी। श्रीला प्रभुपाद की। तो ये तीनों गोस्वामी आए, उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया कि आप सिर्फ चालू कीजिए कमेंट्री देना और हम लोग सब आपको मदद करेंगे। एंड देन गोपाल चंद्र घोष बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने उनसे बात भी की थी, जो प्रभुपाद जी ने उनको बताया, लेकिन जो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया यहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद हैड अ कॉन्वर्सेशन विद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी, ऑल ऑफ देम। ओके, सो वन थिंग, एक बहुत चीज जरूरी है यहाँ पे समझना, यू नो, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि प्रभुपाद जी जो है उनका जो ट्रांसलेशन है इट इज़ नॉट लाइक जीव गोस्वामी ट्रांसलेशन, हु इज़ लाइक यू नो कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन द एंटायर ह्यूमन रेस, जीव गोस्वामी। ओके, जिन्होंने 5 लाख वर्सेज लिखे, 5 लाख उन्होंने श्लोक लिखे हैं। अगर आप भागवतम महाभारत को सबको जोड़ दो, सारे वेद पुराण को भी जोड़ दो, तो आपको पता चलेगा, तो आपको शायद 100 लाख वर्सेज मिलेंगे सबको जोड़ के भी, लेकिन यहाँ पे जीव गोस्वामी ने अकेले ही 5 लाख श्लोक लिखे हैं। तो कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं जैसे यू नो जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट है, आपको शायद पता होगा. तो पहले एक्चुअली वो प्रभुपाद जी के ही मूवमेंट में थे जिन्होंने वो जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था. लेकिन उनको लग रहा था कि वेल प्रभुपाद जी जो है वो जीव गोस्वामी से थोड़ा अलग बता रहे. ओके, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिए प्रभुपाद को किस तरह बुक कमेंट्री देनी है और किस कौन से डायरेक्शन में जाना है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन वॉट एवर द प्रीवियस आचार्यज एंड गोस्वामीज हैव प्रेजेंटेड, द सेम स्टफ प्रभुपाद इज प्रेजेंटिंग टू अस. जो उन्होंने हमको दिया है पूर्वज जनों ने, वो सेम प्रभुपाद जी भी हमको वही दे रहे हैं. उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे आगे के उसमें. हाँ, और उसके बाद उन्होंने एक और चीज डिस्क्राइब किया है कि एक बार प्रभुपाद जी ने उनके साथ शेयर की कि बहुत एक बहुत इम्प्रेसिव दुर्घटना हुई थी उनके साथ कि एक बार उन्होंने फ्लूट का साउंड सुना, फ्लूट की आवाज, बंशी की आवाज सुनी उन्होंने. ये प्रभुपाद जी राधा दामोदर में रहते हैं और राधा दामोदर जो है वो सब सेवा कुंज निधिवन के पास में है, आपको सबको पता है अगर आप गए होगे तो सेवा कुंज और निधिवन में महारास हुआ था और कृष्णा ने अपनी बंसी बजाई थी, राइट, जी सबको पता है. तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एक्चुअली मैंने एक बहुत मधुर आवाज़ सुनी और मुझे कोई शंका नहीं है कि ये कृष्ण की आवाज़ है बंसी की, क्योंकि मैं ये रात का समय नहीं था, मैं सो नहीं रहा था और कुत्ते जो है वो भौंक रहे थे बैकग्राउंड में. तो एक्चुअली मैं आई एम श्योर दैट दिस आई हैव हर्ड कृष्णस फ्लूट साउंड प्रभुपाद की. सो दिस इज यू नो ये स्टेचर है प्रभुपाद जी का कि वो डायरेक्टली टच में थे कृष्णा के साथ, उनके साथ बात करते थे. जैसे एक लेटर में प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल, उन्होंने एक डिसाइपल ने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी आप जब बोलते हो कि जब आप भक्ति में आगे जाते हैं और भावा और प्रेमा स्टेज तक स्तर पर पहुंचते हैं तभी कृष्णा हमको गाइड करते हैं फ्रॉम विद इन, क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज द मीनिंग, वी सी कृष्णा एवरीवेयर, हम कृष्णा को हर जगह पे देखते हैं, तो क्या होता है ऐसे स्टेज पे. प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, कृष्णा को हम, कृष्णा गाइड नहीं करते बाहर से, कृष्णा के साथ हम डायरेक्टली बात करते हैं, कृष्णा हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्टली. तो ये प्रभुपाद जी एक्चुअली खुद कर रहे थे बट उन्होंने ऑब्वियसली उनके नम्रता के वजह से ये सारी चीज़ों के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है. बट ऐसी बहुत सारी लीला है प्रभुपाद जी की, अगर बताना चालू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभुपाद जी एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहे हैं. मैंने एक्चुअली मेरे घर पे एक क्लास दिया था अस्टाउंडिंग प्रभुपाद पास टाइम्स, वहाँ पे मैंने सारी ऐसी मोस्ट मैक्सिमम जो लीलाज है ऐसी जो प्रभुपाद जी के और कृष्णा के कनेक्शन में डायरेक्टली, वो मैंने बहुत शेयर की थी. तो आपको अगर चाहिए रहेगा तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो. ओके, ब्रह्मानंद स्वामी रीडिंग कृष्णा बुक. सो अभी प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य थे जिनको पूरा अधिकार था कि वो खुद की कमेंट्री भी दे जो अलग हो, वो कभी भी कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकती है पूर्वज आचार्य से, लेकिन वो अपना कमेंट्री कभी भी दे सकते हैं. लेकिन उन्होंने नम्रता के वजह से, फिर से उन्होंने ऐसा बहुत जगहों पे किया नहीं है, मैक्सिमम प्लेसेस पे उन्होंने अपनी खुद की कमेंट्री नहीं दी है. सो कमेंट्री दिया मतलब उन्होंने ज़्यादातर प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को, और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो उन्होंने प्रीवियस आचार्य गोस्वामी के बुक्स में से लेके हमको दी है. लेकिन खुद की जो कमेंट्री है, खुद का जो विजन है, वो उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा है और हर जगह पर नहीं दी. तो एक ऐसी एक विजन थी प्रभुपाद की जो मैं सिर्फ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे. तो ब्रह्मानंद स्वामी है, ब्रह्मानंद प्रभु, उन्होंने वो एक बार कृष्ण बुक पढ़ रहे थे डिवोटीज के साथ में, प्रभुपाद डिसाइपल्स के साथ में, और बुक पढ़ते पढ़ते सडनली प्रभुपाद ने उनको रोका. और प्रभुपाद जी कौन सा चैप्टर, वो ब्रह्मानंद स्वामी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, कृष्णा किडनैपिंग रुक्मिणी. कृष्णा भगवान जब रुक्मिणी का अपहरण करते हैं वो चैप्टर वो एक्चुअली नरेट कर रहे थे कृष्णा बुक में से. तो सडनली प्रभुपाद जी ने उनको रोका और उनको बोला कि एक्चुअली जब कृष्णा सिंहासन पे चढ़ जाते हैं, चैरियट के ऊपर चढ़ जाते हैं, तब रुक्मिणी जब रुक्मिणी चढ़ जाती है चैरियट पे, तभी कृष्णा जो है उसका जो रेंज होता है, उसका जो लगाम, घोड़े का जो लगाम, वो रुक्मिणी को दे देते हैं और रुक्मिणी ले लेती है. और फिर रुक्मिणी चैरियट को चलाती आगे, और कृष्णा जो है ही इज ऑल रेडी सेट फॉर फाइटिंग द प्रिंसेस हु आर चैलेंजिंग हिम. तो कृष्णा अपना बो और एरो निकालता है, धनुष बाण लेके रेडी रहता है. अब ये जब सुनते हैं डिवोटीज तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये डिटेल जो है उन्होंने कहां से भी नहीं सुना है. कोई भी आचार्य ने कमेंट्री नहीं दी इसके बारे में, और उन प्रभुपाद जी ने किधर भी नहीं लिखा है. तो सब लोग ऐसा शॉक में हो जाते हैं. तो ये प्रभुपाद जी ने एक्चुअली कभी कभी ऐसा कभी कुछ शेयर कर लिया जो हमको पता नहीं है. तो ये लीलामृत में पास्ट टाइम दिया है जो है वो सिक्स्थ वॉल्यूम में. ओके अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम है. सो शिला प्रभुपाद प्रेडिक्शन इंस्क्राइब्ड इन अ विष्णु टेम्पल स्टोन इन अ विष्णु टेम्पल. ओके तो उसमें ऐसा होता है कि जब ब्रिटिश राज का समय होता है तभी वो लोग हर जो जो भी जितने भी राज्य है इंडिया के भारत के वहाँ पे आक्रमण करते हैं, उनको कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, पराजय करने की कोशिश करते हैं. तो एक पर्टिकुलर ड्रेविड प्रोविंस था, साउथ प्रोविंस, वहाँ पे वो गए और वो लोग कॉन्कर करने का कोशिश किए, लेकिन क्योंकि वो राजा बहुत शक्तिशाली था तो वो लोग कर नहीं पाए और वो लोग पराजित हो गए. लेकिन जो ब्रिटिश जो राज्य का जो मेन जो लीडर था वो थोड़ा कनिंग टाइप था, तो चालाक टाइप था, और उसने एक स्ट्रैटेजी रचा. और ये स्ट्रैटेजी ये था कि एक्चुअली मैं वो लोग एक ट्रीटी में एंटर हुए जो राजा थे उनके साथ ट्रेड में, और फिर वो राजा जो था उनके साथ उसका रिलेशन काफ़ी फ्रेंडली हो गया. तो उसने सोचा कि चलो इन गोरे लोग को मैं अपना मंदिर देखा था जाके, तो हर जितने भी विष्णु के टेम्पल से जाके उनको दिखा रहे थे. तो एक विष्णु टेम्पल में गए और वहाँ पे क्योंकि इस जो ब्रिटिश राज का जो लीडर था उसने स्ट्रैटेजी किया था, एक चक्रव्यूह जैसा रच दिया था उसने. तो वो एक्चुअली में एक अपने पास गन लेके गया था साथ में और वो छुपा दी थी उसने. तो जैसे ही उसको मौका देखा उसने चौका मारा. ठीक है, तो उसने गन निकाला, किंग को शूट किया और सभी मिनिस्टर्स को शूट किया. उसके साथ किंग के साथ चार पांच मिनिस्टर थे, उसमें से एक मिनिस्टर बच गया, वो भाग गया. तो उसने ये सब देखा और वो बहुत दुखी हुआ कि ऐसा सब क्यों हुआ. तो वो भगवान और वो भी मंदिर के पास में, तो वो जो उधर का जो मंदिर का जो था विष्णु का जो टेम्पल था वो गए वहाँ पे, और उसने विष्णु जी से प्रे किया कि आपने ऐसा क्यों होने दिया. तो जनरली नॉर्मली डीटीज डोंट स्पीक राइट, बट ये केस में विष्णु जी को बोलना पड़ा जो सच बात थी वो. तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये मेरा ही डिज़ायर था, मेरा ही इच्छा थी कि जो ब्रिटिश राज है वो पूरे भारतवर्ष में राज करे. अब क्यों ऐसा भगवान ने कहा, क्या प्लान था इसमें. उन्होंने इसके वजह से बोला कि फिर उन्होंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या रीज़न है इसमें. तो भगवान ने बोला कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश जो है वो पूरे इंडिया को कब्जा कर ले और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज पूरे इंडिया में फैला दे, नॉट जस्ट इंडिया ओनली बट इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. वो क्योंकि ब्रिटिश तो अलग अलग कंट्रीज को कॉन्कर करते जा रहे थे राइट, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वो धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में स्प्रेड हो रहा था, वेस्टर्न लैंग्वेज राइट. तो उन्होंने विष्णु ने बोला कि भाई इस लैंग्वेज को इंस्ट्रूमेंट बना के मैं चाहता हूँ कि जब मेरा शुद्ध भक्त आए इस दुनिया में वो इस लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज को यूज करके पूरी दुनिया में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करे, श्री प्रभुपाद की. और फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है डिवोटी, इसके बारे में क्या आप वर्णन कर सकते हो. तो उन्होंने बताया कि ये जो डिवोटी है वो एक संत है और वो एक सन्यासी होंगे और उनका शेवन हेड होगा, शिखा होगा और एक सन्यास डंडा ट्राई डंडा होगा. तो इतना उन्होंने बताया. और ये चीज उस मिनिस्टर ने जो राजा का जो मिनिस्टर था उसने एक पत्थर में जाके इसको लिख दिया ताकि ये फ्यूचर में लाइफ टाइम तक सबको याद रह सके और सब लोग अप्रिशिएट कर सके उस डिवोटी को. तो ये आज भी उस मंदिर में वो पत्थर में इंस्क्राइब्ड है श्रील प्रभुपाद जी के डिस्क्रिप्शन के बारे में, श्रील प्रभुपाद की. सो ये जो है वो मैंने डिवोटीज से सुना है जिन्होंने शायद कमलोचन प्रभु जी से सुना है. ओके सो बट ऑब्वियसली यू नो क्योंकि ऑल्दो इट इज यू नो इट इज देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंस टू दिस बट ये जो पूरा लीला है वो डिवोटी ने शेयर किया है. इसके लिए उसका ऑब्वियसली कोई तो प्रमाण होगा और वो विष्णु टेम्पल अभी भी है वहाँ पे. आई मीन वो लोग गेस कर रहे थे कि कमलोचन प्रभु से सुना है क्योंकि उन्होंने किसी ब्रह्मचारी से सुना था. ये साउथ में ये भी और एक इंटरेस्टिंग पास टाइम है प्रभुपाद जी का. एस्ट्रोलॉजर इन मायापुर. तो एक बार मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन में ब्रह्मानंद प्रभु, भावानंद प्रभु एंड शिला प्रभुपाद, ये तीनों प्रेजेंट थे. तो ब्रह्मानंद प्रभु सिर्फ कुछ यू नो जस्ट ये चीज को सामने लाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला भावानंद प्रभु से. तो भावानंद प्रभु व्हाट अबाउट दैट एस्ट्रोलॉजर इन मायापुर, ताकि सब लोग सारे डिवोटीज को सुनने मिले. तो उन्होंने बोला कि वो मायापुर में जो एस्ट्रोलॉजर है उसका क्या. तो इमीडिएटली भावानंद प्रभु ने बोला कि या सो एक बार वो क्या हुआ था, वो भावानंद प्रभु उनके पास एस्ट्रोलॉजर के पास एक प्रभुपाद जी का फोटो लेके गए थे और फोटो ले जाने के बाद उस एस्ट्रोलॉजर ने उसको गौर से देखा और उन्होंने बोला कि दिस इज द फेस ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल पावरफुल पर्सनैलिटी इन द एंटायर प्लानेट. और उन्होंने ये बोला आगे कि आई कैन सी फ्रॉम दिस पर्सन फेस दैट ही कैन क्रिएट अ हाउस इन विच द एंटायर वर्ल्ड कैन लिव टूगेदर. श्रील प्रभुपाद की. सो ये एक मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन में भावानंद प्रभु ने शेयर किया है लीला. ओके सो किसी को कुछ कमेंट्स है इसके बारे में या कुछ पूछना है. ओके अबाउट श्रील प्रभुपाद बुक्स. ओके सो आई थिंक आप लोग ने काफी शायद सुना होगा कि प्रभुपाद ने काफी बार बोला था कि ये बुक जो किताब जो है वो मैंने नहीं लिखी है, कृष्णा ने पर्सनली लिखी है किताब. राइट तो अभी इसके दो रेफरेंसेस है. पहला ये रेफरेंस ये है कि गुरुदास प्रभु एक बार प्रभुपाद को अपना कृष्णा बुक पढ़ते हुए देख रहे थे और प्रभुपाद जी हंस रहे थे, वही उनका कमेंट्री पढ़ के और वो हंस रहे थे. ही वॉज रिलिशिंग हिज ओन कमेंट्री इन द कृष्णा बुक. सो गुरुदास प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी आप खुद ही अपना बुक लेके हंस रहे हो. फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये मैंने थोड़ी लिखी है, ये तो कृष्णा ने लिखी है, इसके लिए मैं रिलिश कर रहा हूँ. श्री प्रभुपाद की. दूसरा पास्ट टाइम सिमिलर पास्ट टाइम था जब भी भागवत प्रभु जी जो थे वो एक बार प्रभुपाद जी के साथ में थे और प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर्स को प्रीच कर रहे थे. तो एक्चुअली प्रभुपाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने भी मेरे शिष्य हो जब मैं प्रचार करता हूँ तभी वो भी मेरे पास में बैठ के सुने मुझे कि मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरह से प्रचार होता है, किस तरह से प्रेजेंट करना है. तो वो समय पे भागवत प्रभु नहीं थे. तो जब भागवत प्रभु आए तो प्रभुपाद थोड़े गुस्से में थे कि आप प्रेजेंट क्यों नहीं थे, आपको सुनना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ. और जब भी कोई लाइफ मेंबर आता है तभी आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या बताना है, किस तरह से उनको पेश करना है. तो फिर बाद में प्रभुपाद जी उनको पूछे कि क्या तुम मेरे बुक्स पढ़ते हो, क्या तुम मेरी किताब पढ़ते हो. तो भगवत प्रभु ने बोला नहीं प्रभुपाद. तो ऑब्वियसली शर्म से बोल रहे थे. तो प्रभुपाद जी को थोड़ा सा और ज़्यादा गुस्सा आया कि आप मेरी बुक्स नहीं पढ़ते हो, आपको पता है कि मैं अपनी बुक्स खुद पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब खुद पढ़ता हूँ, आपको पता है मैं अपनी. तो भागवत प्रभु जब ये सुन रहे थे तभी तो ऐसा स्टन हो गए थे थोड़े टाइम के लिए. बोलते हैं कि आपको पता है कि मैं अपनी बुक्स खुद क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी मैं पढ़ता हूँ इसको रिपीटेडली तब मुझे कुछ नया सीखने मिलता है. और आपको पता है मुझे नया सीखने क्यों मिलता है, जब मैं एवरी टाइम पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ, तो तभी भी भागवत प्रभु थोड़े से स्टंट थे, प्रभुपाद ने ऊपर देखा हवा की तरफ स्पेस में, और फिर उन्होंने वेव किया कि मैं इसलिए मेरी खुद की किताब पढ़ता हूँ और मुझे एवरी टाइम कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि कृष्णा पर्सनली आते हैं और हर एक शब्द मुझे डिक्टेट करते हैं प्रभुपाद की। तो भागवत प्रभु जो थे, और वो टाइम पे जो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद के शरीर में तभी सात्विक विचार जैसा प्रकट हो रहा था, भाव, इमोशंस, ट्रांसेंडेंटल इमोशन। सो प्रभुपाद एक्चुअली सॉ कृष्णा फेस टू फेस डायरेक्टली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड प्रभुपाद ने ये भी देखा कि कृष्णा आ रहे हैं हर एक वर्ड में उनको डिक्टेट करने के लिए, उनको हेल्प मदद करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद का जो भी बुक्स है, हर एक वर्ड में कृष्णा है। और एक पाश्चात्य मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हर एक वर्ड में कृष्णा है, ठीक है। तो श्रुत कीर्ति प्रभु अपना मेमोरी शेयर करते हैं, एंड ही सेज दैट कि एक बार प्रभुपाद जी मेरे पास बैठे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप सिर्फ एक बुक पढ़ेंगे, कृष्णा बुक, सिर्फ एक बुक, बाकी सारे बुक्स आप नहीं पढ़ोगे, जो भी किताब है आप नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ये एक कृष्णा बुक पढ़ोगे, तो यू विल बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, आप पूरी तरीके से कृष्णामय हो जाओगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर ये एक बुक नहीं, अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ोगे कृष्णा बुक में से, तो भी आप कृष्णामय हो जाओगे। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अगर एक लाइन भी पढ़ोगे, सॉरी एक पेज भी पढ़ोगे, तो भी आप कृष्णमय हो जाओगे। फिर उन्होंने बोला एक्चुअली अगर एक लाइन भी पढ़ोगे और फाइनली एक वर्ड भी पढ़ोगे, तो आप कृष्णमय हो जाओगे। तो श्रुता कीर्ति प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये सेम चीज मुझे तीन बार बोली, एक बार कृष्णा बुक के लिए, एक बार भक्ति सामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, और एक बार भगवद गीता के लिए। तो तीन बार प्रभुपाद ने सेम चीज बोली कि सिर्फ यही एक बुक है आप पढ़ोगे, भगवद गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन या कृष्णा बुक, और अरे उसमें से एक वर्ड भी अगर आप पढ़ोगे तो आप कृष्णमय हो जाओगे। तो अभी आप बोलोगे कि भाई हमने तो बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड पढ़े, तो फिर भी कृष्णमय नहीं हो रहे, मायामय हो रहे हम लोग, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो व्हाट इज आंसर? ओके, लेकिन हमारे में और प्रभुपाद जी में कुछ फर्क है, राइट? क्या फर्क है? प्योरिटी। अगर हम लोग फुल्ली अटेंटिवली ऑफेंसलेसली फुल फेथ के साथ अगर हम लोग एक वर्ड भी पढ़ते हैं और पूरा फेथ के साथ, विश्वास के साथ कि इसमें कृष्णा प्रेजेंट है, तो हम लोग भी कृष्णामय इमीडिएटली हो जाएंगे। लेकिन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, तो ये फुल फेथ ऑफेंसलेस उसको आने में ही पूरा लाइफ टाइम चले जाता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, डोंट थिंक, एंड विल टॉक अबाउट दैट लेटर, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों इसके लिए क्यों हियरिंग बहुत जरूरी है। ओके, सिर्फ चैंटिंग सब कुछ नहीं है। ओके, तो ये श्रुत कीर्ति प्रभु शेयर करते हैं। फिर दूसरा चीज उनके बारे में, उनके बुक्स के बारे में, कि ही केम टू दिस वर्ल्ड टू गिव हिज बीबीटी पर्पस। प्रभुपाद इस दुनिया में क्यों आए? आप बोलेंगे कि हमारा उद्धार करने के लिए, इसके षडभुज प्रभु की। तो आप सोचोगे कि शायद हमारा उद्धार करने के लिए प्रभुपाद आए हैं, या फिर कुछ और करने के लिए आए हैं, जैसे मंदिर स्थापना के लिए आए, या प्रचार कर, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए। लेकिन प्रभुपाद जी एक्चुअली अपने किताब देने आए, उनके पर्पस देने आए। तो भवानंद प्रभु जी शेयर करते हैं कि एक बार प्रभुपाद बता रहे थे उनको कि आपको पता है कृष्णा मुझे एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड में भेज रहे थे, इस भौतिक जगत में मेरे को कृष्णा भेज रहे थे, लेकिन मैं नहीं आना चाहता था क्योंकि ये भौतिक जगत नरक के समान है। और कृष्णा उनको थोड़ा ये कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे कि भाई नहीं नहीं जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए करूंगा वो करूंगा। तो बता रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैलेसेस क्रिएट करूंगा और आपको बहुत कंफर्ट होगा मटेरियल वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद जी मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा बार्गेन करने के बाद दो तीन बार उन्होंने कृष्णा ने फाइनली प्रभुपाद जी को बोला कि यू गो एंड यू राइट बुक्स. तो प्रभुपाद जी ने बोला, तभी एक्चुअली मैंने कृष्णा को बोला कि हाँ अब मैं जाऊंगा. सो प्रभुपाद एक्चुअली स्पेशली हैज कम टू गिव हिज भक्ति वेदांत पर्पट्स, बीबीडी पर्पट्स इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. ओके, सो दैट इज द रीजन इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीड हिज बुक्स. राइट, कोई शक? ओके, किसी को कोई क्वेश्चन कमेंट? ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बुक इज प्रभुपाद जी ने पूरे जितने भी आचार्य है, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पुराण है, वेद पुराण है, उपनिषद, जो भी बोले आप, उनका सारा सार उन्होंने अपने बुक्स में डाल दिया है. दूसरी बात यह है कि सी उन्होंने तीन चीज की है. पहली बात तो उन्होंने जो पूरा आचार्य का सार दे दिया है, जो देखेंगे तो प्रीवियस आचार्य जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया है. अभी जैसे आप कमेंट्री ले लीजिए जीव गोस्वामी का, या विश्वनाथ चक्र ठाकुर का, या श्रीधर स्वामी का, या फिर वल्लभाचार्य जी का, या फिर श्रीनाथ पंडित का, किसी का भी ले लीजिए कमेंट्री, उन्होंने अपने कमेंट्रीज दिए हैं. लेकिन और ऑब्वियसली कोई कोई जगह पे उन्होंने रिपीट किया है जो आचार्य से, लेकिन प्रभुपाद जी ने जितने भी मेन पॉइंट्स है, जितने भी आचार्य के मेन पॉइंट्स हैं, उन्होंने अपने सारे बुक में डाल दिए. नॉट ओनली दैट, बट उन्होंने अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस करंट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी भी प्रभुपाद ने अपने बुक्स में डाल दी है. सो दे आर वेरी प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो. बिल्कुल थियोरेटिकल नहीं है कि भाई एक जगह पे किसी ने बोल दिया कि यू नो ऑस्टेरिटी करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये जमाने में वो करना बहुत मुश्किल है. तो प्रभुपाद जी ने वो सब चीज़ें मॉडिफाई की हमारे लिए, ठीक है. और उन्होंने जो भी है, जितना भी उन्होंने बुक्स में इंफॉर्मेशन दिया है, वो सारा प्रचार के लिए दिया है, ठीक है. इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे. और एक चीज़ उन्होंने जो यूनिक की है, वो उन्होंने अपनी खुद की खुद का उन्होंने अपना दृश्य दिया है उनके ग्रंथों में. सो ही हैज गिवन हिज ओन इनसाइट्स. सो इट सी नाउ आपको एक्चुअली समझ में भी नहीं आएगा, जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये कितने सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन वो सिंपल वर्ड्स में बहुत मीनिंग छुपा हुआ है. तो मैं दो एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है, प्रभुपाद जी के बुक्स में से. सो लाइक यू नो फॉर एग्जांपल कृष्णा बुक में 31st चैप्टर में द सॉन्ग ऑफ द गोपीज, वेर सो यू नो द गोपीज आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग टू कृष्णा अबाउट देयर लव एंड हाउ दे आर अवेटिंग हिज मर्सी. सो उनका कृपा प्राप्त करने के लिए गोपी उनका गुणगान कर रहे हैं भगवान का. तो उसमें ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा बुक में, अगर आप गूगल सर्च करोगे या कृष्णा बुक देखोगे, वी आर सिंपली योर मेड सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. तो यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है. कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड है जो बहुत डीप है? हाँ, और इंटरेस्टिंगली अगर आप भागवतम उठा के देखोगे, 31st चैप्टर का, 10th कैंटो का 31st चैप्टर का, अगर आप 6th वर्स देखोगे या दूसरे वर्सेस भी देखोगे, क्योंकि प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट जो है वो दो बार रिपीट की है, आप अगर उसका ट्रांसलेशन करोगे देखोगे, जो प्रभुपाद जी ने नहीं की है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सिर्फ 14th चैप्टर तक अपनी कमेंट्री दी है, उसके बाद आचार्य ने और हमारे इस्कॉन में उन्होंने हृदयानंद महाराज, फिर द्रविड़ा प्रभु एंड वन मोर डिवोटी, गोपी वरंदन प्रभु, या तो उन्होंने ये तीनों ने डिवोटीज ने मिलकर जो पूर्वज आचार्य है उनकी कमेंट्रीज पेश की है. तो अगर आप देखोगे ना, तो एक्चुअली में श्लोक में ये वर्ड, एक वर्ड पर्टिकुलर वर्ड है वो आता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा उसको ट्रांसलेट करते हैं. तो कौन सा वर्ड है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें से? हाँ, स्लेव्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेव? सी देयर आर टू वर्ड्स हियर, मेड सर्वेंट एंड स्लेव. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इन दोनों में क्या फर्क है, मेड सर्वेंट में और स्लेव में? Regardless of kicking him, punishing him, you know, doing all kind of negative things. And a maid servant is someone who is doing service, but you cannot expect that he will be selfless. At some point of time, he will object. If it goes beyond a certain level, then it will be objected, right? But a slave never objects. So that's the reason, if you see the last verse of the Chaitanya Shishta Shiksha apna Shishta Ashtakam jo hai uska agar hum log last verse dekhte hai asli se avam padam ratam pinastu mam, right? Everyone knows that. To usme uska meaning kya hai last verse ka, last shlok ka kya meaning hai? Yata vata va vidalatu lampato mat pranas na para, right? So, oh Krishna, you know, whether you want to kick me, embrace me, trample upon me, it is your choice, your wish. But I will always be your unconditional lover. Right? So this is actually the meaning of slave. And so actually, Prabhupada is actually revealing the highest glory of the devotees here by saying that, by translating the form that the gopis are actually saying that we are your slaves, Krishna. You are completely purchased. I mean, you have completely purchased us. You can do whatever you would like to do with us. So this is a special word which Prabhupada is translating here. Agar aap Acharya ka commentary dekhoge, to slave word use kiya nahi hai unhone. Theek hai? So this is the depth of meaning of Prabhupada's purpose. Okay? Each and every word. So abhi aapko samajh mein hai ki Krishna khud present hai. Slave mein bhi. Right? So much depth it has. And then the next is, you know, very interesting also. 39 chapter of Krishna book mein, jab Uddhav lene aate hai Bhagwan ko. Theek hai? तभी सबको जो भी डिवोटीज है जो भी ब्रजवासीज है उनको एक भय हो जाता है कि अभी कृष्णा छोड़ के जाने वाले हैं. दे आर फीलिंग इंटेंस डिग्री ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेशन. ओके, सो गौर गोविंद महाराज एक्चुअली उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि तीन तरीके का सेपरेशन होता है. एक तो जब सुनने से कि भाई आपका जो लवर है वो जाने वाला है. फिर जब लवर जब जा रहा होता है हमारे आंखों के सामने और जब लवर चले गया होता है, तो ये तीन तरीके का सेपरेशन होता है. तो यहां पे सिर्फ सुनने से कि कृष्णा हमको छोड़ के जाने वाले हैं, तो वहां पे गोपियों की जो व्रजवासी स्पेशली जो गोपीज है उनकी हालत खराब हो जाती है. और प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वो लोग अपना विदाई के बारे में सुनते हैं तो उनका जो चेहरा होता है वो काला पड़ जाता है. अभी इसमें से कौन सा एक बहुत डीप मीनिंग है वर्ड में, कौन सा वर्ड है ये? जो दूसरे आचार्य है ना वो ऐसा ट्रांसलेट करते हैं कि देयर फेसेस टर्न पेल, सम यू नो, एंड देन सम ट्रांसलेट डिफरेंट कलर्स, बट प्रभुपाद ट्रांसलेट इट एज ब्लैक. व्हाई? दिस ब्लैक कलर इज द हाईएस्ट degree of separation from Krishna, the highest amount of Mahabhav. So Prabhupada is expressing that. He is giving the highest thing. You cannot realize these things unless there is someone to tell you, point out karne ke liye, bhai, haan, dekho, ye ek word mein meaning chupa hua hai. To black kyun karte hai? Aur black isliye karte hai, kyunki wo marne ka color hai. Jab koi marta hai, tabhi uska jo rang hota hai, wo kala pad jata hai. And jitne bhi symptoms hote hai, jo एक्सटेरिक सिम्टम्स होते हैं वो प्रकट होते हैं वो टाइम पे. तो प्रभुपाद तो एक्चुअली मैं प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि गोपीज जब ये सुनते हैं देन नाउ ऑब्वियसली हु इज द हाईएस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, श्रीमती राधा रानी और उनके जो नित्य पार्षद, उनके जो एसोसिएट है अष्ट सखी जो है और जो मंजरीज अष्ट मंजरीज, अभी यही प्रकट कर सकते हैं और कौन हो सकता है. तो प्रभुपाद जी एक्चुअली ये भी बता रहे हैं कि ये कौन है करके. प्रभुपाद की. सो ईच एंड एवरी वर्ड कृष्णा इज पर्सनली प्रेजेंट. ओके, दिस इज वॉट वी नो एज यू नो बींग फुल्ली एब्जॉर्ब एंड अंडरस्टैंडिंग डीपली वॉट इज द यू नो रीजन एंड मीनिंग बिहाइंड ईच एंड एवरी वर्ड दैट प्रभुपाद इज सिलेक्टेड इन हिज बुक्स. प्रभुपाद जी ने हर एक शब्द जो है इसके लिए, जैसे आपने सुना रहेगा ना कभी कभी प्रभुपाद एक शब्द को ट्रांसलेट करने के लिए कभी कभी 4 से 6 घंटे लगा देते थे. इतना टाइम लगता था उनको सिर्फ एक शब्द ट्रांसलेट करने के लिए, इतना सोच के. और यू नो कभी कभी प्रभुपाद ने ऐसे ट्रांसलेट किए वर्ड्स जो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे. जैसे उन्होंने हर चीज जो भी कर्म योगी है, फिर ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सबको उन्होंने भक्ति योगी से कनेक्ट कर दिया है, जो कोई किसी ने भी नहीं किया पूरे दुनिया में. ऐसा उन्होंने सब कुछ भक्ति को सेंटर में लाते हुए सब कुछ कर दिया है. सो ऐसे काफी वर्ड्स है जो प्रभुपाद ने यूज किए, जो डिक्शनरी में भी आप देखोगे तो आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे कि आपको प्रॉपरली नहीं समझेगा. तो ये जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ डिक्शनरी का जो है, वो काफी प्रभुपाद डिसिपल्स ने शेयर किया है कि प्रभुपाद का जो इंग्लिश भी था वो भी इतना पावरफुल था कि कभी कभी हम लोग को भी स्ट्राइक होता था कि हमारा इंग्लिश कितना कमजोर है. ये जब मैं अलाचुआ में था तभी प्रभुपाद डिसिपल शेयर करते थे कि उनके इंग्लिश में भी बहुत दम है. सो यू नो प्रभुपाद वॉज अ एक्सेप्शनल आचार्य. ओके सो नाउ नेक्स्ट, सो इट यू नो प्रभुपाद बुक्स आर द लॉ बुक्स फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स. ये प्रभुपाद जी ने खुद बोला है, ये किसी ने उनको डेजिग्नेट नहीं किया है, प्रभुपाद जी ने खुद बोला है कि दीज बुक्स आर द लॉ बुक्स फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर. 10,000 साल तक ये लॉ बुक्स हो गए हैं. मतलब उसका मतलब क्या है, सी व्हेन यू मेक अ लॉ एंड यू से दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स और यू नो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसका मतलब क्या होता है? आई मीन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट व्हेन यू से यू नो यू आर यू नो यू ट्राई टू एनफोर्स अ लॉ. ओके एंड देन यू से that this law, I'm not going to take it out the next for the next 10,000 years. What is the meaning of that? हाँ, मतलब कि ये जो आने वाले 10,000 generation वाले जो devotees आएंगे, उनको सभी को ये follow करने के लिए बहुत आसान होगा. और ये follow करने से ही उनका भक्ति में वो लोग advance कर सकते हैं. क्योंकि मैंने जो दिया है वो बहुत प्रैक्टिकल दिया है, हर एक जन फॉलो कर सकता है ये चीज. इसके वजह से उन्होंने बोला कि ये 10,000. अभी उनका विजन देखिए. ओके अब दूसरी बात ये देखिए कि उनका टॉलरेंस कितना था. जो आचार्य जो थे पूर्वज आचार्य, उन्होंने अपने सारे जितने भी रियलाइजेशन है, रसिक रियलाइजेशन उन्होंने शेयर किए. प्रभुपाद ने क्या किया है? प्रभुपाद हाइएस्ट कैलिबर के डिवोटी थे. उन्होंने हमको, आप सोच नहीं सकते, अगर मेरे पास रसिक ज्ञान हो कि हर कृष्णा हर पास टाइम में ये लीला क्यों कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा हुआ वैसा हुआ, अगर मुझे वो रीजन जानने मिले तो मैं सभी सबको यही बता के फिरूंगा कि भाई देखो देखो कितना एक्साइटिंग पास टाइम है कृष्ण का. यू नो जैसे हरी सूरी करके एक कमेंटेटर है भागवतम के, एक आचार्य है, उन्होंने कृष्णा क्यों पर्टिकुलर लीला करते हैं, कैसा करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब उन्होंने डिस्क्राइब किया है. ठीक है, उन्होंने पूरा शेयर किया है वो. तो क्वेश्चन मार्क यही है कि भाई जब इतने हाईएस्ट लेवल के कैरिबर हो, आप टॉलरेट कैसे कर सकते हो? यस टॉलरेटेड बाय नॉट गिविंग हिज फुल डीप रियलाइजेशन. ही हैज गिवन एवरीथिंग फॉर अस, फॉर आवर बेनिफिट, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनीथिंग, सेल्फलेसली हैज गिवन जस्ट टू बेनिफिट अस. आप सोच सकते हैं अगर मेरे उनके जगह पे मैं हूं तो मैं 10 रसिक कमेंट्री लिख दू कि भाई देखो मेरे को इतना ज्ञान है और मेरा कृष्ण के साथ क्या कनेक्शन है. लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने सिंपल फिलोसॉफी दिया है, इतना सब भर भर के उन्होंने महाभारत रामायण विष्णु पुराण पद्म पुराण शिव पुराण उपनिषद सब कुछ उन्होंने डाल दिया उसमें. और एट द सेम टाइम उन्होंने प्रचार करने के लिए, उनको पता था कि आने वाला, देखिए इसके लिए उनके हर एक वर्स में, हर एक जब भी उन्होंने कोई परपट दिया है, आप देखेंगे 80-90% उन्होंने मायावाद का खंडन किया है उनके परपट्स में. एंड एट द सेम टाइम उन्होंने आचार्य कमेंट्री भी दी है, उनका खुद का भी रियलाइजेशन उन्होंने दिया है और सब कुछ दिया उन्होंने. ठीक है, लेकिन क्या किया उन्होंने, 80-90% उन्होंने मोस्टली मायावाद रेफ्यूट किया है. अब इसके लिए कभी कभी डिवोटीज को लगता रहेगा कि प्रभुपाद के बुक्स बहुत रिपीटेटिव है और बोरिंग है, जो हम लोग कवर करेंगे उसमें चैलेंजेस टू रीड प्रभुपाद बुक्स, उसमें हम लोग मैं ये सब डिस्कस करूंगा. लेकिन आप सोच सकते हो कि प्रभुपाद ने किस तरीके का उन्होंने टॉलरेंस रख के हमको क्या दिया है, हमारे लिए, हमको इस भौतिक जगत से निकालने के लिए, कृष्णा के पास भेजने के लिए उन्होंने खुद का भी जो रियलाइजेशन उसको दबा कर बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट किए बुक्स. तो यू नो फॉर अ रसिक आचार्य इट्स अ टॉलरेंस, ऑस्टेरिटी है उनके लिए. It's a big thing, very big thing. You cannot hide your emotions and you know your bhav because you want to share it. You know, jab aap ekdam ecstasy mein aa jate ho, tabhi aapko kisi ko share karna hota hai. Chaitanya Mahaprabhu ne isi ki wajah se you know radha bhav liya hai taki wo share kar sake sabke sath, right? तो सिमिलरली प्रभुपाद जी का भी इतना होने के बावजूद भी उन्होंने हमको सिंपल वर्ड्स दिए जो हम लोग कर सके अप्लाई डे टू डे लाइफ में. सो हिज टॉलरेंस एंड मर्सी वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट. प्रभुपाद स्पेंट मैक्सिमम टाइम इन राइटिंग हिज बुक्स. उनका गोल भी था जो ज्यादा से ज्यादा समय था उनका ताकि वो अपना बुक वितरण कर सके, ट्रांसलेशन कर सके. ठीक है, उनको अगर आप उनके लेटर्स पढ़ोगे एक चीज बहुत क्लियर था, प्रभुपाद को रिटायर होना था मैनेजमेंट से और उनको हम लोग को मैक्सिमम बुक्स देने थे. उनको हमको रामायण देना था, महाभारत देना था, भक्ति विनोद ठाकुर के बुक्स देने थे और सारे वेद पुराण भी देने थे उनको, लेकिन वो नहीं दे पाए जस्ट बिकॉज कि उनके पास टाइम कम था और उनको प्रचार करना था और क्योंकि वो डिवोटीज को ट्रेन भी कर रहे थे. सो आप सोच सकते हो कि प्रभुपाद के लिए बुक्स क्या था, उनका लाइफ था जो रीजन की वजह से आए और दैट्स द रीजन उन्होंने उस पर मैक्सिमम टाइम फोकस किया था अपना उनके बुक्स में. फिर प्रभुपाद अभी आपने सुना होगा कि भाई प्रभुपाद ने काफी बार बोला था कि दीज बुक्स दीज पर्पट्स आर माई पर्सनल एक्सटेसीज, राइट? सब शायद डिवोटीज ने सुना होगा कि ये जो मेरे जो ग्रंथ है, ये जो पर्पट्स है स्पेशली, ये मेरे पर्सनल एक्सटेसी है. तो प्रभुपाद ने एक्चुअली अपना एक्सटेसी छुपा के रखा है और जैसे मैंने दो तीन जो एग्जांपल दिए जो वर्ड्स के वो उन्होंने डाल के रखे है, ये सिर्फ हमको फाइंड करना है कहाँ पे है वो. और ठीक है, ये तो जो रास की बात है, यू नो, जो जैसे कोई हाई लेवल जिसके पास हाई लेवल नॉलेज होगा उसको शायद ये सब पता होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रभुपाद ने जिस तरह से उनके पर्पट्स दिए तो उसमें बहुत सारा मटेरियल रास भी है. मतलब भले वो मटेरियल इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए. भले वो रामायण से दे रहे, महाभारत से दे रहे, या कोई पुराण से दे रहे, या उपनिषद से दे रहे, या फिर प्रीचिंग के बारे में दे रहे, करंट सिचुएशन के बारे में दे रहे, कमेंट कर रहे दुनिया के ऊपर, क्रिटिसिज्म कर रहे साइंटिस्ट का, लेकिन उनके हर एक बातों में दम होता है. जो भी वो लिखते हैं बोलते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ रीजन होता है और आपको लगेगा कि हाँ ये प्रभुपाद ने जो बोला है इट मेक्स कंप्लीट सेंस. सो क्योंकि वाई बिकॉज इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम प्रभुपाद ओन एक्सटेसी. प्रभुपाद जी का खुद का भाव दे रहे वो. So everything connected, whatever he is writing, definitely has to be, you know, out of the box. So his books are the foundation. He also gave. See, so now when I said that, okay, Prabhupada gave everything in his books. सब कुछ प्रभुपाद ने दे दिया है. तो अभी आप पूछोगे कि भाई प्रभुपाद ने हमको कहाँ पे सब कुछ दिया है? उन्होंने थोड़ा बहुत महाभारत दिया है, थोड़ा बहुत रामायण दिया है, या फिर थोड़ा बहुत आचार्य का उन्होंने कमेंट्रीज दिए. लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ अपने ग्रंथों में दिया, उसका क्या मीनिंग है? कि जितने भी एसेंशियल पॉइंट्स है आचार्यस के, जितने भी कमेंट्रीज जो सिद्धांत के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर जो भी रसिक आचार्य के कमेंट्रीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो डिटेल्स देते हैं, ऐसे जो मेन पॉइंट्स है वो उन्होंने सब कुछ दिए अपने पर्पट्स में. ये आपको नहीं रियलाइज होगा जब तक आप प्रभुपाद के बुक्स ना पढ़ लो एक बार, और प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने के बाद आप आचार्य के बुक्स पढ़ो, आचार्य के बुक्स पढ़ने के बाद वापस आप प्रभुपाद के जब बुक्स पढ़ोगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि प्रभुपाद ने हमको जो भी आचार्य ने बताया वो सभी उन्होंने अपने ग्रंथ में डाल दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल जीव गोस्वामी ने जो संदर्भास लिखे है, सठ संदर्भास, उसमें जो पहला संदर्भ जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि किस तरीके से श्रीमद भागवतम इज अमल पुराण, जैसे इज द यू नो हाइएस्ट अथॉरिटी. और जो बाकी तीन संदर्भ है उन्होंने संबंध ज्ञान दिया है उसमें कि तो आप कौन हो, जीव कौन है, कृष्णा कौन है, और भगवान का उन्होंने उनको डिफाइन किया है, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ. ये तीन संदर्भ में उन्होंने संबंध ज्ञान दिया है प्रभुपाद जी ने ये तीन. सो अभी देखिए फर्क क्या है, सिर्फ प्रभुपाद जी ने चीजों को एक जगह पे प्रेजेंट नहीं किया है. एंड इट इज ऑब्वियस जब प्रभुपाद हम लोग को 80 वॉल्यूम्स ऑफ बुक दे रहे हैं और पर्पट्स दे रहे हैं, सो ऑब्वियसली उनकी जो भी टीचिंग्स होगी, उनकी जो भी उन्होंने जो कमेंट्रीज जो आचार्य की दी है वो स्प्रेड आउट होगी, क्योंकि अगर वो हर एक आचार्य के कमेंट्री ऐसे ही देने लगे तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फिर, राइट? और तो प्रभुपाद ने एक्चुअली हर एक अपने पर्पट्स में, आप देखेंगे अगर गौर करेंगे तो कोई कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीव गोस्वामी और या रूप गोस्वामी बताते हैं एक पॉइंट पे कि भाई कृष्णा जो है, ओनली कृष्णा ही कैन लिबरेट डीमंस, नो वन एल्स कैन डू दैट, ओनली कृष्णा कैन लिबरेट डीमंस, फॉर दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, कि ऐसा कोई पॉइंट बोल दिया. ओके तो प्रभुपाद जी ने ये पॉइंट डाला है उनके भागवतम के सेकंड कैंटो में, एक पर्पट में डाल दिया है कि भाई जो लोग महाभारत के टाइम पे जब युद्ध हुआ था, जो लोग कृष्णा के अगेंस्ट खड़े थे, जितने राजा थे, जब उन्होंने, कृष्णा ने उनको ग्लांस दिया, तब उनके ग्लांस से ही सब लोग लिबरेट हो गए थे. अब कौन सा तरीका लिबरेशन, वो भी प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि जिनको, जो भी डिमंस को, जो भी असुर लोगों को कृष्णा के प्रति अप्रिसिएशन पैदा हुआ, जैसे कोई कोई लोग न्यूट्रल थे, वो लोग को कृष्णा के बारे में उनको कोई अपराध नहीं था या उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था, सिर्फ कृष्णा को जब उन्होंने देखा तभी उनके हृदय में अप्रिसिएशन जाग गया. तो ऐसे असुर जिनको भगवान के लिए कुछ नेगेटिव इमोशंस नहीं थे, वो लोग वैकुंठ लोग जाते हैं. और जो असुर भगवान को एनवी की तरह से देखते हैं, मतलब उनको दुश्मन की तरह से, वो लोग को भी मोक्ष मिल गया, लेकिन वो लोग को सायुज मुक्ति मिली. या फिर किसी किसी, जो भी असुर थे वो लोग भगवान के अंदर, भगवान के बॉडी में समा गए, मर्ज हो गए. ठीक है, तो अब ये डिटेल प्रभुपाद जी ने कितना अच्छे से दिया है, अगर आपको नहीं पता होगा कि ये आचार्य ने दिया है उनके ग्रंथों में, तो आपको ये भी नहीं समझेगा कि प्रभुपाद ने ये सारे पॉइंट्स दिए हैं. एक जगह पे प्रभुपाद जी ने, और एक एग्जांपल देता हूं कि जो जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भ में मेंशन किया है, कि क्वेश्चन ये है कि जय विजय का, कि जय विजय जो होता है वो तो हमको पता है कि भाई उनको शाप मिलता है और वो फिर हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण, रावण, दंतवक्र और शिशुपाल, ये तीन लीला में आते हैं, राइट? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली में हर एक कल्प में जय विजय नहीं आते हैं, क्योंकि जय विजय भगवान के नित्य पार्षद है. सिर्फ क्यों, ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब 12 आवर्स का मतलब एक कल्प होता है, और उसमें वो एक कल्प में 14 मनुज होते हैं. सब डिटेल है एनीवेज, बट एक दिन में ये एक कल्प में ही जय विजय आते हैं, बाकी सारे कल्प में जय विजय नहीं आते हैं. तो जय विजय जो है वो भगवान के नित्य पार्षद है, और जो डीमन बन के आते हैं हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, दूसरे कल्प में, वो लोग ऑर्डिनरी जीवाज होते हैं. तो ये जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भ में बताया है, जो प्रभुपाद जी ने अपने चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के पर्पट में इसको डाल दिया है, समझे आप? तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके हमको दे दिया है. सो यहां पे प्रभुपाद जी ने हमको, अच्छा अभी किसी को पता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या है? अच्छा आप लोग, आप में से कितने लोग 16 माला करते हो? अरे बोल, आपको प्रयोजन नहीं पता है? मे बी आपको संबंध ही नहीं पता है, तो प्रयोजन का दूर की बात है. तो संबंध और अभिधेय का क्या मीनिंग है? So, संबंध मतलब व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, एंड सिर्फ रिलेशन नहीं कि हाँ मैं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है, उतना नहीं. भगवान कौन है, उसका एक्टिविटीज क्या है, क्या उसका, क्योंकि भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिवम एवान वो व्यति तत्पथा तत्वदेव पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना. जो मुझे तत्व में पहचान लेता है वो मेरे धाम में आ जाता है. सो ये जो है वो तत्व है, संबंध ज्ञान इज अ तत्व. You should know संबंध ज्ञान, you should you be aware of the अभिधेय also. Without that, how can you reach प्रयोजन? So संबंध is realizing, संबंध महसूस करना है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान का क्या लीला है, उनका उनका स्वभाव क्या है, जीव का क्या स्वभाव है, जीव कौन है, भगवान का नेचर मतलब उनका जो लीला है उसमें वो किस तरीके का लीला है, उधर उसके पीछे जो सिद्धांत होता है, वो सब पता होना चाहिए. तो हमको, हम लोग एक्चुअली भगवान के धाम में जा सकते हैं, ये सब जब अंडरस्टैंडिंग होगा. इसके लिए जीव गोस्वामी जी ने 3 संदर्भ दिए संबंध ज्ञान के लिए, एक संदर्भ में वाइंड अप नहीं किया है, 3 संदर्भ दिए. पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, हाँ, तो जीव संदर्भ नहीं है, क्योंकि इट इज ऑब्वियस दैट यू नो वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड. सो देर इज द परमात्मा संदर्भ, देर इज भागवत संदर्भ एंड देर इज कृष्ण संदर्भ. तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने ब्रह्मांड संदर्भ नहीं दिया है, क्योंकि ये काम मायावादी के लिए छोड़ दिया मैंने. उन लोग बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड क्या है. तो मैंने आपको ये जो कृष्ण संदर्भ है, भागवत संदर्भ और परमात्मा संदर्भ, तो ये अगर आपको डिटेल पता चल जाएगा तो आपको संबंध ज्ञान आ जाएगा. और ये संबंध ज्ञान के हरी बोल ये संबंध ज्ञान मिलने से आप फिर अभिधेय के ऊपर फोकस कर सकते हो. अभिधेय का मीनिंग क्या है? हाउ टू कनेक्ट दैट रिलेशनशिप, हाउ टू सर्व द लॉर्ड, कैसा सेवा कर सकते हैं भगवान की ताकि उनको प्राप्त कर सके हम लोग. तो अभिधेय जो है वो सिखाते हैं हमको कि किस तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए. ओके, एंड देन बाय डूइंग द सर्विस फाइनली हम लोग को प्रयोजन मिलेगा. प्रयोजन का मतलब है फाइनल गोल, राइट? अच्छा, अभी ये बताइए कि कौन से आचार्य, कौन से पर्टिकुलर इसके ये है रिप्रेजेंटेटिव्स, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, और कौन से डीटीज. ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट संबंध अभिधेय नहीं पता है, प्रयोजन, लेकिन कौन से डीटीज है वो पता है. ओके, सो संबंध ज्ञान के डीटीज मदन मोहन, अभिधेय सनातन गोस्वामी, एंड प्रयोजन राधा गोपीनाथ. ओके, सो कौन आचार्य है इनके? संबंध ज्ञान के कौन आचार्य है? मदन मोहन के कौन वर्शिपेबल, किसके वर्शिपेबल डीटीज है? सनातन गोस्वामी, अभिधेय गोविंद देव रूप गोस्वामी, एंड प्रयोजन गोपीनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी. ठीक है, अभी अच्छा मुझे ये बताइए कि डिफरेंस क्या है, क्यों एक ही कृष्णा है वो तीन तीन वे में, क्यों भाई एक ही कृष्णा क्यों नहीं, उसको क्यों मदन मोहन बोलते हैं, गोविंद देव क्यों बोलते हैं और गोपीनाथ क्यों बोलते हैं? अच्छा, मेरे पास वैसे यहाँ पे माइक है ऑडियंस के लिए, किसी को कुछ कमेंट्स देना है तो दे सकते हैं. तो जी आप पास करेंगे, किसी को कमेंट्स इसके बारे में? नहीं पता है. ओके, बहुत लॉजिकल है. अगर आप मदन मोहन का क्या मीनिंग है, क्योंकि हम लोग मदन से अट्रैक्टेड है ना इस भौतिक जगत में, तो लस्ट, वी आर अट्रैक्टेड टू लस्ट. सो इन ऑर्डर टू गेट मेक अस फ्री फ्रॉम लस्ट वी वर्शिप मदन मोहन. अनलेस एंड अंटिल वी आर फ्री फ्रॉम लस्ट वी कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद कृष्णा. दैट्स द रीजन इट इज संबंध दैट इट इज. जब तक हम लोग लस्ट से छूट नहीं सकते हैं तब तक भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते हैं. इसके लिए संबंध ज्ञान, संबंध डीटीज मदन मोहन, एंड देन सनातन गोस्वामी इज द वर्शिपर यू नो ऑफ मदन मोहन. अब उसमें भी वो सीक्वेंस में भी आपको मैं बताऊंगा कि यू नो देर इज सम मीनिंग बिहाइंड दैट सीक्वेंस ऑल्सो, वाई सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी. फिर गोविंद देव, गोविंद देव का क्या मीनिंग है? प्लेजर देते किसको? भक्तों को. प्लेजर टू द काउस, राइट? उसका एक मीनिंग ये भी है कि हम सारे अपने इंद्रिया जो है वो भगवान के सेवा में लगा दे, गोविंद. ओके, तो उसका मतलब क्या है कि नाउ वी आर ट्राइंग टू एंगेज अवर सेंसेस इन सर्विस ऑफ लॉर्ड. दैट इज द मीनिंग ऑफ अभिधेय. सो दैट्स द रीजन राधा गोविंद देव. इट इज द सेम कृष्णा बट मैनिफेस्टिंग इन थ्री फॉर्म्स. Because Krishna also says in the Bhagavad Gita, right? That ye yatha mam prabhadante tam sadaiva bhajami aham. Manam vartamanu vartante manushya partha sarvasa. As you surrender to me, I reward you accordingly. So that's the reason three different departments for three different kinds of devotees. Right? Sambandh, abhidhaya and prayojan department. So sambandh se aage jo advance hote hai, wo log abhidhaya pe jate hai. Aur abhidhaya se aage advance hote hai, they attain prayojan. So now prayojan Radha Gopinath, why? Raslila is the highest destination, the the love of the gopis is the highest form of destination for all the aspiring devotees of Chaitanya Gaudiya Vaishnavism. So that's the reason, Radha Gopinath. Right? And Raghunath Das Goswami is the one who is worshipping. Abhi ye sequence kyu aisa hai? Kyunki Acharya humble position lete hain yahan pe. Sanatan Goswami actually mein Rup Goswami ke siksha guru hai. The most senior Vaishnav in the parampara. Rup Goswami is under Sanatan Goswami. Sanatan Goswami most senior. And Raghunath Das Goswami is even junior to Rup Goswami. But here, they are taking the position of servant of servant of servant. Bolo aage. So this is what, you know, our sampradaya is, Chaitanya Mahaprabhu sampradaya, and significant. Anyways, so coming to the main point, ki sambandh abhide prayojan. Abhi aapko samajh mein aagaya kya hai? Tino. To tino ko Prabhupada ji ne diya hai apne granthon mein. Abhi kyun koi bolega ki bhai prayojan nahi dikh raha hai mujhe. Prayojan kidhar hai? Lekin prayojan dekhne ke liye aapko chakshu hona chahiye, proper. जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना वो दो वर्ड्स के बारे में, तो उस तरीके से हमको ट्रेन होना है भक्ति में, तब हमको प्रयोजन क्या है समझ में आ जाएगा. संबंध तो पता ही है, प्रभुपाद जी ने बहुत अपने बुक्स में तो भर भर के लिखा है कि हम लोग कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान कौन है, और फिर मायावाद के बारे में दिया है, बहुत खंडन किया उन्होंने मायावाद का. बहुत सारे नास्तिक लोगों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ताकि हम लोग के जो हमारा जो इस कलयुग में जो प्रभाव है हमारा मायावाद का, उसको नष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी ने संबंध ज्ञान बहुत दिया है. अभिधेय, तो प्रभुपाद जी ने यह भी बताया कि हमको भक्ति कैसे करनी है, किस तरह करनी है, राइट? सो ही हैज गिवन अभिधेय नॉलेज आल्सो. एंड ऑब्वियसली सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि भाई संबंध अभिधेय प्रयोजन हमारे भौतिक जगत के लिए है. आप स्वरूप अटेन करते हो, that is called real sambandh. The end of sambandh gyan comes to the point when you attain swarupa, your siddh swarup. So siddh swarup ka matlab kya hai? Your vastu siddhi, matlab ki jab aapko pata chal jayega ki spiritual world mein bhagwan ke vaikunth dham mein aapka kya real swarup hai, aap gopa ho, gopi ho, sakha ho, ya fir yashoda maiya ki tarah aap unko vatsalya bhav ye kar rahe ho, to ye aapko jab realization hoga तो आपको असली संबंध ज्ञान का रियलाइजेशन होगा. सो इट इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेइंग दैट वी आर द स्पिरिट सोल, वी आर नॉट द बॉडी, एंड अप टिल इट कंटिन्यूज अप टिल अनलेस एंड अंटिल यू रियलाइज योर स्वरूप इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज संबंध ज्ञान. एंड देन अभिधेय सिमिलरली इन द मटीरियल वर्ल्ड एज अ साधका व्हाट आर वी सपोज टू डू, दैट इज अभिधेय इन द मटीरियल वर्ल्ड. इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वंस यू अटेन योर स्वरूप, हाउ यू सर्व द लॉर्ड, I mean, you will be under someone and they will direct you. What is your service? What kind of body you have? All the features of the body and all that. So that is called Abhide. Okay? So this is Abhide. So this continues till the spiritual world also. And then Prayojan, obviously the final goal is also like, you know, serving. The final goal is serving, basically. You know? It's quite simple. That the reward of service is what? It is Mahaprasad. The reward of service is what? Service. Okay. So everything is in Prabhupada's books. There is no need to go outside ISKCON. He has given everything. Those who have gone outside ISKCON, na dobi ka, you know, kutta na ghar ka na ghat ka. Vaisa hua hai halat. Right? This is a practical experience. We have seen that over a period of time. And I will you know, discuss that later when we are going to discuss about why we should, you know, whether one can read other Acharya books or not. That time I'll address all these things. Prabhupada also said that ISKCON is his body. Right? So, everything is in ISKCON. Everything is in Prabhupada's books. And then there is no need to go outside of ISKCON. And you don't have to read anything beyond Prabhupada's books also to attain perfection. Okay. Next. So, this is about Prabhupada books. One particular Leela, what, you know, Rameshwar Prabhu is a very fired up book distributor, yeah, Prabhupada disciple. So, wo ek baar bata rahe the ki ek baar Prabhupada aur disciples aapas mein conversation kar rahe the aur kisi disciple ne Prabhupada ji ko bola ki Prabhupada ji, you know, we think that there is going to be a war between China, you know, and India and some other countries. Probably there will be a third world war. एंड प्रभुपाद जी ने तो प्रभुपाद को बोला कि भाई वॉर होने वाला है शायद, ऐसा लग रहा है. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि एक्चुअली में वॉर होगा, इट विल हैपन. प्रभुपाद जी ने बोला वॉर होगा. फिर सब लोग डिवोटीज सोच रहे थे कि ओके प्रभुपाद इसका सोल्यूशन क्या है आप, क्योंकि प्रभुपाद ने जो बोला तो ऑब्वियसली लाइक इट इज लाइक यू नो कृष्णा सेइंग थिंग्स. तो दे वर लाइक कंसर्न एंड सो दे आस्क्ड प्रभुपाद कि प्रभुपाद क्या होगा, इज देयर अ सोल्यूशन. प्रभुपाद जी ने उन्होंने पहले तो बोला कि देयर कोई कोई सोल्यूशन नहीं है. जहां पर भी कम्युनिज्म है और एथिज्म है वहां पे वॉर होना ही चाहिए. और फिर वो बोले कि इसके लिए कृष्णा ने पूरा महाभारत रचा था इन ऑर्डर टू हैव दैट वॉर. तो जिधर भी कम्युनिज्म है और एथिज्म है वॉर होना ही चाहिए. तो बाद में उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद इसका क्या सोल्यूशन है. प्रभुपाद जी ने बोला एक ही सोल्यूशन है, मेरी किताब उसका वितरण. अगर आप दुनिया के हर एक कोने में मेरी किताब का वितरण करोगे तो जब लोग मेरी किताब को स्पर्श करेंगे उनके हृदय में परिवर्तन आएगा. दे विल फील हैप्पी, काम एंड पीसफुल. एंड सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैन कॉज पीस इन द एंटायर वर्ल्ड एंड इन द ग्रीफ स्टिकन हार्ट्स ऑफ एवरीवन एंड इट इज द ओनली वे टू अवॉइड वॉर. सो संकीर्तन बृहद मृदंग इसके लिए एब्सोल्यूट है. तो फिर इसके लिए जब प्रभुपाद ने बोला कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है वाइड को अवॉइड करने के लिए, तो प्रभुपाद जो डिसाइपल्स बहुत खुश है, उन्होंने प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय. सो उनको एक्चुअली मैं प्रभुपाद जी ने ये कहा कि अगर आप मेरे बुक का वितरण नहीं करोगे तो फिर वॉर होगा, लेकिन अगर आप वितरण करते हो तो फिर वॉर बच सकता है. और अभी आपको पता ही है कि इस्कॉन एक्सपांड हो रहा है प्रभुपाद जी के जाने के बाद, और कितने सारे ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं हर साल. इसके वजह से आप सोच सकते हैं कि हाँ शायद अभी आप देखिए ये बालाकोट का भी जो इंसिडेंट हुआ तो हमको लग रहा था अरे वॉर होगा, लेकिन शायद डिवोटीज बैठे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बुक्स. उसके वजह से कुछ हो नहीं रहा है. इमरान खान सिर्फ बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उतने तक ही रहता है, आगे कुछ हो नहीं रहा है, राइट. सो प्रभुपाद के बुक्स का वितरण करो पूरी दुनिया में, हर एक नुक एंड कॉर्नर में फैला दो, तो वॉर अपने आप खत्म हो जाएगा. ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था. ओके नेक्स्ट. ओके सो इसके बारे में कोई किसी को प्रश्न या कमेंट है? ओके गुड, थैंक यू. क्योंकि मुझे मैं थोड़ा टाइम्स में आगे निकल गया हूँ तो मुझे बैलेंस करने के लिए अभी थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा. ओके व्हाई रीड प्रभुपाद बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा सो फर्स्ट क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज, आप में से कितने लोग ने प्रभुपाद के बुक्स पढ़े हैं? सम ऑफ द बुक्स. ओके ओके मुझे ऐसा पूछना चाहिए कि किसी कौन डिवोटीज है जिन्होंने प्रभुपाद के सारे बुक्स पढ़े? एक भी नहीं. अच्छा आपने कितना टाइम बिताया इस्कॉन में आने के बाद? नहीं एज अ लाइक इस्कॉन को जब ज्वाइन किया एज अ न्यू कमर, हाउ मेनी इयर्स? या सो आई वांटेड टू नो दैट. 9 years, 9-10 years. ओके एनीवन एल्स? 10-15 साल वाले भी मुझे पता है यहाँ पे है. तो अगर ओके तो भगवद गीता किसने पढ़ी है, कितने लोगों ने पढ़ी है? ओके नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन. अच्छा अभी मैं रियल क्वेश्चन पूछता हूँ. भागवतम? ओके यू आर इन द फेस ऑफ ओके गोइंग ओके भागवतम. तीन लोगों ने, तीन चार. या सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, नोट करना कि मुझे याद नहीं रहता है, मैं उसके बारे में बोलने वाला हूँ. ओके अच्छा ये तीन चार जो डिवोटीज है उसमें से सीसी किसने पढ़ा है पूरा? एक डिवोटी ने. भागवतम आपने पढ़ा है फुल? एक डिवोटी में. हरी बोल. ओके अभी दूसरी बार किसने पढ़ा है? ओके चलो ठीक है, उसी के वजह से हम लोग असेंबल हुए, ताकि आप लोग सब ये डोज लेके जाओ आज, कि लाइफ टाइम तक आप प्रभुपाद बुक्स पढ़ सको. सो सी, पहली बात तो ये है कि भाई कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई प्रभुपाद के बुक्स लाइफ एंड सोल है, उसके बिना भक्ति का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. क्यों? बहुत सारे रीजंस है. फर्स्ट इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गुरुज इंस्ट्रक्शंस. सो आई विल रीड दिस लेटर लेक्चर ऑन भगवद गीता 17.1-3 होनोलुलु 4th July 1974. सो वुमेन डिवोटी इज आस्किंग प्रभुपाद, कैन वी जस्ट हैव द चैंटिंग विदाउट इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद? व्हाट इज दैट? सुदामा, शी वॉन्ट्स टू नो एक्चुअली दैट शुड दे जस्ट हैव द चैंटिंग विदाउट रीडिंग योर बुक्स और विदाउट इंस्ट्रक्शन और फॉलोइंग द प्रोग्राम प्रभुपाद, बट दैट चैंटिंग मस्ट बी प्योर. योर गुरु इज राइटिंग बुक्स. If you think there is no necessity of reading books, that is Guru Avagya. Do you mean to say I am writing these books whole night for selling and making money? What do you think like that? Why do you think like that? Woman devotee. So there should just be chanting and reading of the books? Prabhupada, yes. Woman devotee, but how much comment? Prabhupada, huh? Sudama, she says that how much comment should there be for reading the books? In other, actually the situation is that to be proper siksha means that one must give instructions as the spiritual master. He has to follow your program, rising early. Prabhupada, we have already sung Arena Karibo Mane Asha Guru Mukha Padma Vakya Chiteta Koriya Aikya. What is that? Read Bhadra Vardana Arena Kariho Mane Asha. Prabhupada, mean, do not think otherwise. Whatever Guru has said, accept it. Finally, Arana Koriyo Mane Asha. Don't divert from this. This is the instruction how you can divert from the instruction. This is the instruction. How you can divert from the instruction of Guru. Woman devotee. So just read it, not comment. Prabhupada, yes. You read it or not read it. But you have to realize. Suppose one is illiterate, it cannot be read. But he can follow. ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हर एक भक्त को बुक्स पढ़नी है, क्योंकि प्रभुपाद ने उन्हीं के लिए लिखी है, और अगर उनके बुक्स को हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो गुरु अवज्ञ होता है, ऑफेंस टू द गुरु होता है. तो विदाउट ऑफेंस, अगर हम गुरु अवज्ञ करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो फिर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ. तो प्रभुपाद जी ने लास्ट में क्या लिखा है, अगर कोई इलिटरेट है, सपोज किसी को पढ़ना नहीं आता, तो क्या करेंगे फिर? तो सुनो, सुनो और ग्रहण करो, रियलाइज एंड फॉलो. उसके बिना कोई स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाने का क्वेश्चन नहीं है. सिर्फ चैंटिंग से कुछ नहीं होगा, प्रभुपाद जी ने यहां पे क्लियरली बता दिया है. ठीक है, सो सी भगवत, अपना स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना, वो कुछ एकदम इजी नहीं है. इतना इजी आसान भले प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति योग इज हाइएस्ट एंड इट इज अ मोस्ट इजिएस्ट वे टू अटेन द लॉर्ड. ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, वो सब बहुत डिफिकल्ट है भक्ति योग से. लेकिन भक्ति योग है ना, एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है. जब अंदर आते हैं ना, तभी समझ में आता है. सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है प्रभु जी? ये सब तो साधने की बात है. वैष्णव संघ, एसोसिएट ऑफ डिवोटीज, टफेस्ट. यू डीलिंग्स विद वैष्णव्स. And you are, see, please remember, एक चीज हमेशा ध्यान रखना. You, अगर आपको वैष्णव, पहली बात तो अगर आप aspire कर रहे हो, तो you have to come to मध्यम अधिकारी. आप कनिष्ठ बन के नहीं रह सकते हो. और मध्यम अधिकारी का रोल क्या है? डिस्क्रिमिनेशन. उसको नॉलेज थरली पता है, शास्त्र का ज्ञान, और वो लोग डिस्क्रिमिनेट करना जानते हैं. क्योंकि हम जब वैष्णव के साथ डील करते हैं, तभी किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, कैसा डील करना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये हमको समझ में आना चाहिए. अगर वो नहीं समझ में आएगा तो यू आर अ कनिष्ठा. सो इन नरहरि सरकार कृष्णा बन्नामृत वो बताते हैं कि अगर हम मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को, तीनों को इक्वल रिस्पेक्ट दे, तो हम लोग का भक्ति से पतन होना अवश्य है. सो अगर एक आप मध्यम को जितना रिस्पेक्ट देते हो, उतना सेम रिस्पेक्ट अगर आप उत्तम को देते हो, तो फिर आपका भक्ति में पतन होना निश्चित है। इसके लिए हर वैष्णव को डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। हमको ये पता होना चाहिए कि मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ, ये कौन से स्तर पे है। जैसे, और ये ठीक है अगर हम ये लेवल पे भी उसको जज ना करें, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीका है कि जैसे हम बोलते हैं कि सीनियर्स इक्वल्स और जूनियर्स, तो हम लोग सीनियर से मर्सी लेते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उनको सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ओके। फिर इक्वल्स के साथ हम लोग शेयर करते हैं हमारा भक्ति, और उनका सुनते हैं और हम उनको भी शेयर करते हैं, और उनका फॉलो करते हैं और वो भी हमारा फॉलो करते हैं, दैट इज इक्वल। एंड कनिष्ठ मतलब और जूनियर मतलब कि हम लोग उनको कृपा देते हैं। सो ये हमको एसोसिएशन भी हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके का एसोसिएशन में हम है और कितने लोगों के साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड, शास्त्र में रिकमेंड किया है कि सीनियर और इक्वल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और कनिष्ठ जो है उनको कृपा देनी चाहिए। अगर आप उनका संग लोगे ज़्यादा टाइम तो आपका भक्ति कम हो सकता है। तो उनको हम लोग को कृपा देनी है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि उनको उन लोग में ज्ञान नहीं है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं शास्त्र को, वो लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे कि भक्ति क्या है, कैसे फॉलो करना है, समझे आप। तो इसके लिए जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैंने जो ग्रंथ में जो दिया है वो सभी को पढ़ना है ताकि सब लोग समझ सके ये सब चीजें, ठीक है। तो जो इलिटरेट है और उसको कोई पढ़ने का ये नहीं है, लेकिन वो सुन सकते हैं और सुन के फॉलो कर सकते हैं, उतना तो वो कर सकते हैं, तो फिर वो लोग भक्ति में आगे जा सकते हैं। प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि ताकि हम लोग अपने आप को खुद को बचाएं। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री दी है चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में, उन्होंने परपट में लिखा है, ऑल डिवोटीज कनेक्टेड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट मस्ट रीड ऑल द बुक्स दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड। सी, प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑल द बुक्स, ऐसा नहीं लिख रहे कि भाई हाँ वो लीला याद करके कि सिर्फ कृष्ण बुक पढ़ो काम हो गया अपना, ऑल द बुक्स, चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद्गीता एंड अदर्स, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम दे विल सिंपली ईट स्लीप एंड फॉल डाउन फ्रॉम द पोजिशन, दस दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू अटेन एन इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। सो प्रभुपाद ने लिखा है फॉल डाउन होने से बचाने के लिए भी हमको बहुत जरूरी है कि हमको उनकी किताब पढ़नी चाहिए हर रोज, ओके। देखिए ये चीज, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपको अगर साधना भी करना है या फिर आपको अगर सेवा भी करनी है, वो सेवा को सस्टेन करने के लिए, साधना को सस्टेन करने के लिए, और सेवा जो है वो विदाउट एनी मोटिव, जैसे हमारा अटैचमेंट होता है नेम फेम से या फिर अल्टीरियर मोटिव होता है उसमें, अगर हम लोग रीडिंग और हियरिंग नहीं करते हैं, एक टाइम आएगा कि जो भी हम अभी कर रहे हैं वो हम फ्यूचर में जाके छोड़ सकते हैं, या फिर उसका जो पर्पस रहेगा वो पूरा अलग रहेगा। इट वॉन्ट बी प्योर डिवोशनल सर्विस, इट विल बी मोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस, हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए फ्यूल देना गाड़ी को बहुत जरूरी है, विदाउट फ्यूल इट विल नॉट सस्टेन, इट विल नॉट गो अहेड, ओके। सो प्रभुपाद जी ने इसके लिए बोला है कि रीड माई बुक्स एवरी डे टू मेक टेंजिबल एंड क्विक एडवांसमेंट। अगर आपको अच्छा कितने भक्तों को जल्दी एडवांस होना है, एवरी वन या अगर हम लोग पूछेंगे कितने लोग को अभी सीधा कृष्ण के धाम में जाना है, दो दो हाथ ऊपर करेंगे सब लोग, राइट। तो सब लोग को मर्सी चाहिए, लेकिन वी हैव टू पे द प्राइस ऑल्सो, राइट। तभी समझ में आता है कि कितना हाई प्राइस है, कितना हाई वैल्यू है उसका, वरना हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड, चीप बना देंगे चीजों को, राइट। सो अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट भी होना है क्विकली, उसके लिए भी प्रभुपाद के बुक्स बहुत जरूरी है। क्यों? बहुत सिंपल चीज है, प्रभुपाद इज अवर गुरु, ओके। एंड जब हम लोग प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कृष्णा स्पेशली हमको अटेंशन देते हैं, वो फेवर देना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई ये मेरे शुद्ध भक्त का ग्रंथ पढ़ने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे तो उनको स्पेशल मर्सी देना है, तो डेफिनेटली आपको स्पेशल मर्सी मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु विल बी वेरी हैप्पी, एंड सो वी कैन मेक टेंजिबल एंड क्विक एडवांसमेंट। और उससे क्या होगा, हमारा भक्ति बढ़ेगा, डिटैचमेंट जो है मटेरियल वर्ल्ड से भी बढ़ेगा टाइम के साथ। ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे भी है, ये सिर्फ भागवतम का श्लोक नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्चुअली मैं आप रियलाइज करोगे जो डिटैचमेंट आना चाहिए, जो डिवोशन आपका बढ़ना चाहिए एन अटैचमेंट टुवर्ड्स द लॉर्ड एंड देन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि जो जो आपने शास्त्र पढ़े हैं, जो भी प्रभुपाद के बुक्स में पढ़ा है, जब आप इंप्लीमेंट करते हो तभी आपके सामने वो सब एक्सपीरियंसेस आएंगे। आप डिजायर करो, भगवान रेसिवेट करेंगे। आप यू नो जो लाइक बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे जो आपको डायरेक्टली मिलेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो अभी प्रभुपाद जी ने बोला भाई कि 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग, तो सब लोग बोलेंगे कि भाई सिर्फ चैंटिंग ही करो तो 99% मेरा काम हो गया, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि शास्त्र में ना बहुत सारा ऐसा एग्जैजरेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स है जो एक्सट्रीम ग्लोरीज बताते हैं किसी भी लिंब ऑफ भक्ति के, जैसे श्रवणम हो, कीर्तनम हो, स्मरणम हो, पदसेवनम। सी, आप भगवान के धाम में ना कोई भी एक लिंब फॉलो करने से भी आप भगवान के धाम में तुरंत जा सकते हो। जो जरूरी नहीं है सिर्फ चैंटिंग, श्रवणम करो, कीर्तनम करो, स्मरणम करो, पदसेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति में से अगर आप एक लिंब भी करते हो आप भगवान के धाम में जा सकते हो। बट द कंडीशन इज इट शुड बी प्योर। सो यहां पे प्रभुपाद जी ने इसके लिए यहां पे क्या बताया, बट दैट चैंटिंग मस्ट बी प्योर। तो ये प्योर चैंटिंग के स्टेज पे आने के लिए हम लोग इतना सब प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? और देखो, चैंटिंग करने के लिए कोई आपको 24 घंटा चैंट करने की जरूरत भी नहीं है। एक कृष्ण नाम, वन सिलेबल ऑफ द होली नेम, इफ यू चैंट प्योरली, चैतन्य चरितमृत में इसका डिस्क्रिप्शन है, यू अटेन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। एंड चैतन्य महाप्रभु सेज, इफ यू चैंट मिलियंस ऑफ राउंड्स फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, स्टिल यू कैनॉट अटेन कृष्णा इफ यू कमिट ऑफेंसेस। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, प्योर चैंटिंग इज एक्चुअली द गोल। शुद्ध नाम, शुद्ध नाम कैसे मिलेगा? भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं पद्म पुराण को कोट करके कि यू कैन ओनली अटेन शुद्ध नाम बाई द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज, देर इज नो अदर वे। तो मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज का मतलब क्या है? शुद्ध नाम सिर्फ भक्तों की कृपा से पा सकते हैं। उसका क्या मीनिंग है? जब कृपा किसी की चाहिए उसको हमको प्रसन्न करना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, लॉयल बनना पड़ता है, फेथफुल बनना पड़ता है, तब जो हमारे जो भक्त होते हैं जिनके पास, जो लोग शुद्ध नाम लेते हैं वो लोग कृपा बांट सकते हैं, फिर अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है? सो नाउ अगर आप देखें प्रभुपाद के एग्जाम्पल में भी, जैसे शास्त्र बताते हैं कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कति अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेतवस्त्र उपनिषद में बताया गया है कि इम्प्लिसिट फेथ इन गुरु एंड कृष्णा साइमल्टेनियसली, जब ये स्टेज आएगा तभी द पर्पज ऑफ द वेदास आर रिवील टू अस, ठीक है? जब ये आएगा स्टेज तभी सारे वेद पुराण के हमारे सार जो है वो हमारे हृदय में प्रकट होंगे और तभी हम लोग समझ पाएंगे कि क्या दिया है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ओके? सो इन ऑर्डर टू दैट इज द रीजन, प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे लेटर में लिखा है, बहुत सारे उन्होंने लेटर्स में लिखे है कि गुरु एंड कृष्णा, गुरु एंड कृष्णा, गुरु एंड कृष्णा, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द सीक्रेट फॉर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, फेथ, साइमल्टेनियस फेथ इन गुरु एंड कृष्णा, इम्प्लिसिट फेथ इन गुरु एंड कृष्णा, देन ओनली वन कैन मेक एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो अगर आप एक, अगर गुरु को सपोज आपने बोला कि मुझे भगवान कृष्ण के लिए फेथ है और आपने बोला कि गुरु के लिए कम है, तो फिर दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि भगवान ये बोल रहे हैं गीता में और यू नो आई मीन आदि पुराण में अर्जुन को बोलते हैं कि जो मेरे भक्त का जो भक्त है वो असल में मेरा भक्त है, जो मुझे मेरा भक्त समझता है वो एक्चुअली में मेरा भक्त नहीं है। तो जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेते, उनको सेवा नहीं करते और उनको प्रसन्न नहीं करते, तब तक कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसके लिए गुरु में और गुरु के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जितना आपको अटैचमेंट गुरु के लिए है उतना ही आपको अटैचमेंट कृष्ण के लिए भी उत्पन्न होगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे गुरु के लिए ज्यादा है और कृष्णा के लिए कम है, वो भी गलत है, क्योंकि गुरु का जो पर्पस है वो भी कृष्णा को ही देना है आपको। द गुरु हैज टू गिव कृष्णा टू यू, ही शुड नॉट गिव एनीथिंग एल्स टू यू। सो अगर ऐसा होता है तो आइडल वर्शिप हो जाता है, जब गुरु को भगवान समझ लेते हो या भगवान से ऊपर समझ लेते हो, राइट? तो इसके लिए साइमल्टेनियस 50% 50% इन गुरु एंड कृष्णा, ये दोनों ट्रैक पे जब गाड़ी जाता है तभी आपको सक्सेस अचीव हो सकता है। उसके वजह से प्रभुपाद के पर्पट्स और बुक्स हमको पढ़ने चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद इज एक्चुअली द गुरु ऑफ इस्कॉन। सो वी हैव टू, यू नो, वेन एवर वी वॉन्ट टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो गुरु साधु शास्त्र। सो गुरु इज श्रील प्रभुपाद इज अवर गुरु इन इस्कॉन, राइट? सो शिला प्रभुपाद एज फाउंडर आचार्य इज ऑल्सो प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर ऑल डिवोटीज, एज यू नो। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रभुपाद के जो बुक्स है वो लॉ बुक्स है। सो जब हम लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे फाउंडर आचार्य है शिला प्रभुपाद, उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इट्स एन ऑब्लिगेशन दैट एवरी वन मस्ट फॉलो शिला प्रभुपाद, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है मूवमेंट में। इज द फाउंडर सेट द प्रिंसिपल्स, जो हम जैसे यू नो उन्होंने मिशन सेट किया है, मिशन स्टेटमेंट्स जो है, या फिर उन्होंने जो स्टैंडर्ड और स्टाइल जो सेट किया है, जो कल्चर सेट किया है जो इंस्टीट्यूशन का, दैट वी हैव टू फॉलो, विदाउट विच वी कैन नॉट एक्चुअली बी लॉयल टू शिला प्रभुपाद। सो इन ऑर्डर टू नो द स्टैंडर्ड, द कल्चर, द मिशन, फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, अदरवाइज हम लोग को पता नहीं चलेगा कि प्रभुपाद ने क्या बोला है। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑल्सो, बिकॉज यू नो देर इज अ चांस कि भाई आप किसी और डिवोटी से प्रभावित हो सकते हो मूवमेंट के बाहर में, और फिर उनको फॉलो कर सकते हो आप शायद, और फिर उनको फॉलो करते हुए आपको शायद गिल्ट फील हो सकता है कि मैं इनको जो फॉलो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने अपने श्री प्रभुपाद को छोड़ दिया है, या फिर यू नो जब भी डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन होते हैं तभी हमको एक को फॉलो करना पड़ता है। जब दो आचार्य में तनाव होता है, मतभेद होता है, तभी हमको एक आचार्य को श्रद्धापूर्वक उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो लॉयल्टी एस्टैब्लिश करने के लिए भी हमको प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना जरूरी है, तो हमको एक्चुअली कन्विक्शन आएगा कि शिला प्रभुपाद इज अ फाउंडर आचार्य। सो ही इज एक्चुअली द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, मतलब फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी शिला प्रभुपाद इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन इस्कॉन। देयर इज नो अदर अथॉरिटी ग्रेटर देन शिला प्रभुपाद। ऑल प्रभुपाद डिसाइपल्स दे आर ऑल्सो सपोज टू फॉलो प्रभुपाद, राइट? So this is the meaning of founder acharya as a preeminent siksha guru. Everyone is following the siksha of Prabhupada. So they are duty bound, you know, followers are duty bound to follow the desires of the founder acharya. Like, you know, the four laws of ISKCON. Kisi ko pata hai four laws of ISKCON? Prabhupada ne kaun se set ki hai? Char laws. Yeah. No. Wo regulative principles hai. We should avoid that. Four laws of ISKCON. जो इस्कॉन का जो मिशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फिर जो डायरेक्शन है आगे जाना है, तो वो कौन से? हाँ, यस, देन यस, प्रीचिंग इज द एसेंस एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, राइट? तो ये प्रभुपाद जी ने चार जो लॉज है इस्कॉन के वो हमको दे दिए, जो भी कुछ करना है यही लॉज को सेंटर में रख के करना है, ओके? सो ईच एंड एवरी डिवोटी इन इस्कॉन, सभी को हमको इस डायरेक्शन में ओरिएंट करना है अपने आप को, ताकि हम लोग जो भी फाउंडर आचार्य ने जो सिद्धांत और जो प्रिंसिपल जो लॉज एस्टैब्लिश किए वो हमको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो देन वी कैन बी कॉल्ड एज अ लॉयर फॉलोअर ऑफ श्रील प्रभुपाद, ओके? ओके, सो नाउ अनदर पॉइंट इज दैट to seek the help of super soul from within and connect internally with guru. Very interesting point. अब आप, चलो मैं आपको एक question पूछता हूँ कि आर यू इन टच विद परमात्मा, कोई परमात्मा के साथ टच में है? कोई बोल सकता है कि कोई परमात्मा के टच में है? मैं बोल सकता हूँ कि मैं हूँ, और मैं क्यों हूँ उसके लिए भी मैं आपको रीजन बताऊंगा obviously. So see, पहली बात, जो परमात्मा के टच में आने का जो सवाल है, आप ऐसा मत सोचिए कि परमात्मा विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो आप भावा प्लेटफॉर्म पे आ गए। देर आर स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। सो एट वन स्टेज जैसे हम लोग यू नो लाइक देयर इज श्रद्धा श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया देन निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम दीज आर द नाइन स्टेज ऑफ डिवोशन. तो जैसे हम लोग निष्ठा के स्टेज पे पहुंचते हैं जब हम लोग स्टडी होते हैं भक्ति में तो वो एक स्टेज होता है जहाँ पे हम लोग परमात्मा के साथ टच में आते हैं स्टार्ट हो जाते हैं. और जब भाव और प्रेमा में आते हैं तभी हम परमात्मा को एक्चुअली अपने हृदय में देख सकते हैं कृष्णा को देख सकते हैं हम लोग. ठीक है तो वो हम लोग ये स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग जो प्रभुपाद जी ने जो स्टेज डिस्क्राइब किया उसके बारे में बात कर रहे हैं. और अभी मैं इसका प्रमाण भी आपको देता हूँ कि एक्चुअली मैं ऐसा नहीं है कि सारे जो जितने भी डिवोटीज यहाँ पे बैठे हैं अगर वो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे सोलह माला करेंगे. प्रभुपाद ने कम से कम ये चीज 20-30 टाइम्स बोली है अपने लेटर्स में लिखी है. इफ यू चैंट रेगुलरली 16 राउंड्स फॉलो द रेगुलर प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली एंड रीड माई बुक्स थरली स्क्रूटिनाइजिंगली केयरफुली स्टूडियसली सिंसियरली सीरियसली देन द परमात्मा फ्रॉम विद इन विल रिवील टू यू एवरीथिंग. 20-30 टाइम्स इन हिज लेटर्स ही हैज मेंशन दिस पॉइंट. आई कैन सेंड यू द रेफरेंसेस आल्सो मेनी टाइम्स. सो सी नाउ व्हाट इज द मीनिंग दैट व्हेन द गुरु इज नॉट प्रेजेंट व्हेन यू आर अनेबल टू गेट हेल्प फ्रॉम द गुरु एक्सटर्नल गुरु एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ गुरु द सुपर सोल इफ यू आर सिंसियर द सुपर सोल फ्रॉम विद इन विल हेल्प यू एंड ही विल सेंड यू इन द राइट डायरेक्शन. सो लाइक यू नो मेनी टाइम्स अगर आपने देखा होगा कि आप प्रे कर रहे हो कुछ सिंसियरली इंटेंसली और आप सिंसियर अपने डिजायर में और सडनली कृष्णा रिस्पेक्ट करते हैं आपके साथ और या फिर आपको गाइड करते हैं डायरेक्ट करते हैं तो दैट इज एक्चुअली सुपर सोल हेल्पिंग यू. सो नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि परमात्मा जो है हमको हेल्प करते हैं हमारे बलबूते पे नहीं क्योंकि प्रभुपाद जी ने यह आश्वासन दिया है कि अगर आप ये करेंगे बुक्स पढ़ेंगे ये फॉलो करेंगे तो भगवान आपको अंदर से प्रोत्साहित करेंगे. ये प्रभुपाद जी ने वचन दिया है तो ऑब्वियसली फिर भगवान को करना ही है फुलफिल राइट. सो परमात्मा विल गाइड अस फ्रॉम विद इन एंड उसका ये मतलब नहीं है कि भाई प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि परमात्मा गाइड कर रहे हैं तो फिर एक्सटर्नल गुरु की क्या जरूरत है. ये भी गलत कंसेप्ट है. अगर गुरु अवेलेबल नहीं है जैसे प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि अगर आपको ड्रीम में आके गुरु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और फिर आपने जाके गुरु के साथ शेयर किया तो फिर गुरु बोलेंगे कि नहीं जो मैंने बोला है वो फॉलो कीजिए. तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि एक्सटर्नल गुरु जो है जो फिजिकल लिविंग गुरु है फाइनली वो जो बोलेंगे दैट वी हैव टू फॉलो और जो आपको जो ड्रीम में जो इंस्ट्रक्शन आया था वी हैव टू डिस्कार्ड दैट. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन द गुरु इज नॉट प्रेजेंट वी आर हेल्पलेस वी आर सीकिंग द मर्सी. सी अगेन वी आर डिपेंडेंट एंड वी आर सीकिंग द मर्सी ऑफ गुरु दैट टाइम बिकॉज सी दिस इज अ गुरु तत्व. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग ये जो गुरु कंसेप्ट है वो तत्व है. ही इज नॉट जस्ट वन पर्सन ही इज कृष्णा ही इज बलराम ही इज नित्यानंदा ही इज ऑल्सो परमात्मा. एंड द ओनली पर्पज ऑफ हेल्पिंग ईच एंड एवरी डिवोटी इज टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ. दैट इज द रीजन जो कृष्णा जो है वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं बलराम के फॉर्म में. बलराम जी जो है सारे गुरु तत्व के. सो दिस इज द तत्व. सो वी हैव टू कनेक्ट इंटरनली विद द गुरु नॉट जस्ट एक्सटर्नली. और मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मीनिंग है. ये बहुत जरूरी है समझना. सो इट इज नॉट जस्ट द फॉर्म फिजिकल फॉर्म ऑफ द गुरु दैट वी आर अट्रैक्टेड टू. वी हैव टू बी अटैच्ड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु एज द फाउंडर आचार्य ऑल्सो. क्योंकि एक्चुअली देखेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं है बहुत केसेस में. प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी भर भर के इंस्ट्रक्शन दिए. आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करना है और पूरा लाइफ एंड सोल डाल देना है. एंड ऑब्वियसली फॉर दैट गुरु के गाइडेंस में ही करना है जो भी करना है. लेकिन ये सारे गुरु के एक्सपांशंस है जो हमको हेल्प करने आते हैं. ठीक है. सो ये आपको परमात्मा का जो प्रोत्साहन जो है इंस्पिरेशन वो आपको स्टार्ट हो जाएगा रियलाइजेशन. ओके. सो गिरिराज महाराज ने अपने एक क्लास में कहा था कि अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ते हो इट्स अ सटल ऑफेंस टू प्रभुपाद. ओके. तो जैसे प्रभुपाद जी ने खुद बताया कि गुरु अब आ गया है अगर हम ग्रंथ नहीं पढ़ते हो तो गिरिराज महाराज ने भी वही शेयर किया फिर. ओके. सो स्पेशली लीडर्स गुरुज काउंसलर्स मेंटर्स. अभी देखिए बुरीजन प्रभु ने जो प्रभुपाद डिसाइपल है उन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने ऑब्जर्व किया है इस्कॉन मूवमेंट में कि जितने भी मेंटर्स गाइड्स है, काउंसलर्स या जो भी है, बहुत सारे डिवोटीज वो लोग बहुत बार अपने नेचर के हिसाब से गाइड करते हैं डिसाइपल्स को. आई मीन यू नो द काउंसिलीज है या फिर जो उनके अंडर जो है उनको अपने नेचर के हिसाब से गाइड करते हैं. तो उन्होंने बताया कि देर आर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस. तो कोई कोई डिवोटीज मोड ऑफ पैशन में होता है, कोई कोई इग्नोरेंस में होता है, कोई कोई गुडनेस में होता है. अब हमारा जो गाइडेंस होता है वो कभी कभी हम लोग काफ़ी वी आर अटैच टू अवर ऑर्थोडॉक्स व्यूज, ट्रेडिशंस, कंडीशनिंग्स ऑफ द पास्ट एंड अकॉर्डिंगली हम लोग गाइड करते हैं डिवोटीज को. सो ही मेंशन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ही सेज फॉर अ डिवोटी हु इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और द पोजिशन, दे शुड ऑलवेज गाइड एंड दे शुड यू नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुरु साधु शास्त्र. दे शुड रिपीट गुरु साधु शास्त्र एंड इवन इफ दे आर कंडीशन दे विल गाइड फ्रॉम अ ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म. वाई? जस्ट बिकॉज दे आर रिपीटिंग गुरु साधु शास्त्र. बिकॉज गुरु साधु शास्त्र दे आर अनकंडीशनल, राइट? दे आर लाइक दे आर प्योर. शास्त्र इज प्योर, द साधुज आर प्योर एंड गुरु इज प्योर. सो वी टॉकिंग अबाउट द आचार्यज, यू नो, हु आर लाइक अवर गुरुजन्स. सो दे आर ऑल प्योर एंड वेन वी फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस देन वी गेट टू नो हाउ टू गाइड डिवोटीज, हाउ टू ट्रेन डिवोटीज. सो अनलेस एंड अंटिल यू नो इफ अ डिवोटी डज नॉट नो वॉट द फाउंडर आचार्य हैज गिवन, लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाके किसी कोई गाइड या मेंटर को जाके पूछूं कि ये ऐसा क्यों प्रभुपाद ने बताया या फिर ये ऐसा क्यों होता है, और वो मुझे बोलेंगे कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए अब, इट्स ओके, यू नो, डोंट वरी अबाउट इट, कृष्णा विल रिवील टू यू एवरीथिंग. बट इट्स नॉट नेसेसरी. ये आंसर प्रभुपाद ने अपने बुक्स में डाला है या फिर किसी और सीनियर डिवोटी को पता है क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद बुक्स पढ़े हैं, उनको पता है कि प्रभुपाद ने क्या दिया है और वो इस तरीके से गाइड करते हैं. अभी जैसे प्रभुपाद का जो लीला भी है, अगर वो हम लोग वो पढ़ेंगे और हमको समझेंगे तो हमको एक और चीज समझ में आती है कि प्रभुपाद एज एन आचार्य वो आचार्य के लेवल पे उतर के मध्यम अधिकारी के लेवल पे आए और इस तरह से उन्होंने सबको ट्रेन किया और गाइड किया है, ठीक है? तो देन हम लोग को जब किसी डिवोटी को गाइड करना है तो वी शुड नॉट बिकम जजमेंटल इमीडिएटली. हमको ये सोचना चाहिए कि ये डिवोटी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, और अगर उसको हम लोग प्रॉपरली हैंडल करेंगे, गाइड करेंगे, तो फिर वो प्रॉपर पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है? तो ये कि प्रभुपाद ने कब कैसे किसके साथ डील किया है, प्रभुपाद के लीला से हमको समझ में आता है. एट द सेम टाइम शास्त्र का ज्ञान चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि शास्त्र क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कोई कोई टॉपिक्स है, अगर मैं आपके पास लेके आऊँ और मैं पूछूँ कि इसका क्या आंसर है, तो आपके पास आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैंने ऐसा सुना है और मुझे ऐसा लगता है. नहीं, आपने गुरु साधु शास्त्र से क्या सुना है, प्रभुपाद ने क्या बोला है. सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट प्रभुपाद सेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना है गुरु साधु शास्त्र से. तो क्या होता है, तो भूरीजन प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि अगर डिवोटी ऐसा करते हैं तो भले भी उनमें कंडीशनिंग्स होगी लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म से फिर गाइड कर सकते हैं डिवोटीज को. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लीडर्स, गुरुज, काउंसिल मेंटर्स एंड each and especially those who are taking this kind of position, they must have read Prabhupada books at least once. Okay, at least once. Very important. Otherwise, better, you know, when someone is coming to you, if you don't know something, just very humbly tell that I don't know, you can go and ask someone else. You should not discourage the devotees. Okay? Okay, so any comments or question on this? Why read Prabhupada's books? Okay, next. Absolute necessity of hearing. So hearing is most important. So ek jagah pe jo maine Bhagavatam ke jo references diye yahan pe. हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ. अगर आप वेदाबेस में जाके देखोगे इसके पर्पट्स, तो ये तीनों जगह पे प्रभुपाद ने ये बोला है कि आउट ऑफ द नाइन लिम्स ऑफ भक्ति विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद सेज हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक जगह पे प्रभुपाद ने लिखा है चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ये तीनों में उन्होंने हियरिंग का इंपॉर्टेंस दिया है कि हियरिंग, और एक जगह पे उन्होंने बोला हियरिंग एंड चैंटिंग बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो सी, इसका आइडिया क्या है ये बताने का, ये शेयर करने का, कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी अगर हम देखेंगे जो कोई चैंट करते हैं डिवोटीज, तो जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और यू नो इट इज इम्प्योर, इट इज नॉट प्योर. तो इसके वजह से जैसे हम बोलते हैं कि नाम रूप गुण लीला वो सब आना चाहिए अपने आप, लेकिन किसी के पास ऐसा आया है अभी तक? किसी ने भगवान को देख लिया है चैंट, अरे कृष्णा, क्या आप देख रहे हो कृष्णा को? क्या आप उसके लीला को देख रहे हो? क्या आप उसका गुण स्मरण कर पा रहे हो, लीला स्मरण कर पा रहे हो आप, या फिर देख पा रहे हो क्या आपको? नहीं ना. सो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक आप सफिशियंटली हियर नहीं करोगे. सी, प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, अनलेस यू हियर यू कैन नॉट प्रीच, यू कैन नॉट चैंट. सो हियरिंग फ्रॉम गुरु, एंड देन प्रभुपाद राइट्स इन वन ऑफ द पर्पट्स दैट हियरिंग इज सॉलिडिफाइड बाय चैंटिंग द होली नेम. सो वॉट एवर यू हियर फ्रॉम गुरु, आप जो भी गुरु से सुनते हो पहले समझ के लीजिए वो, और उसके बाद आप चैंट कर सकते हो, उसके बाद आप प्रचार कर सकते हो. अगर आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है आपको, तो आप बोल ही नहीं सकते हो कुछ. तो आप चैंट तो कर लोगे, लेकिन अगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया गुरु से, तो आप शुद्ध नाम नहीं ले सकते हो भगवान का. टू चैंट द होली नेम वी नीड शुद्ध नाम, इट शुड बी अ प्योर नेम ऑफ द लॉर्ड. वी कैन नॉट चैंट नामाभास एंड नाम अपराध, इट हैज टू बी शुद्ध नाम. इन ऑर्डर टू हैव शुद्ध नाम, वन शुड हैव नॉलेज, संबंध ज्ञान. ओके, सो दैट इज द रीजन. अगेन, नाउ व्हाट इज प्रभुपाद बुक्स? एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ हियरिंग. व्हाट इज प्रभुपाद बुक्स? इट्स साइलेंट हियरिंग, इट्स हियरिंग बट इट्स साइलेंट हियरिंग. सो एंड वन मोर थिंग, जो भी इस्कॉन में जो भी प्रवचन देते हैं, सब लोग प्रभुपाद के बुक्स में से दे रहे हैं, सब लोग प्रभुपाद को ही रिपीट कर रहे हैं. सो प्रभुपाद के बुक्स में सब कुछ है. इसके लिए गुरु ने क्या दिया है वो जानना बहुत जरूरी है बिफोर सॉलिडिफाइंग योर चैंटिंग एंड ऑल्सो प्रीचिंग. सी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने अभी जो कथा देना स्टार्ट किया है, और जो फर्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है सेमिनार का, या फिर जितना भी मैंने प्रवचन रखे है, 10 साल तक मैंने सिर्फ सुना है, सिर्फ सुना है, फॉलो किया है, सर्व किया है, ठीक है, 10 साल तक. उसके बाद जब मुझे कन्विक्शन आया कि अब मेरा जो फंडामेंटल है थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया है, और ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु, तब जाके मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया है शेयर करना. ऑब्वियसली एनी वन कैन प्रीच द मैसेज ऑफ भगवद गीता. प्रभुपाद ने बोला है कि जितना आपको पता है उतना प्रचार कीजिए, लेकिन वो जो है वो डिवोटीज बनाने के लिए, नए लोगों को लाने के लिए. लेकिन जब आपको आगे खुद को बढ़ना है स्पिरिचुअल लाइफ में, दूसरों को गाइड करना है, उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है. तो उसके लिए पहले आप सुनिए, सर्व कीजिए और फॉलो कीजिए, उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप प्रचार कर पाओगे, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि आपने बहुत सुना है, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस. सो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब इन द शास्त्र दैट द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट चैंटिंग, हियरिंग. भक्ति बिगिन्स विथ श्रवणम, नॉट कीर्तनम. या सो रीडिंग एंड सो रीडिंग इज साइलेंट हियरिंग. ओके, एंड ऑब्वियसली नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट हम लोग को बुक्स पढ़ने चाहिए या लेक्चर सुनने चाहिए, यू नो. लेकिन दोनों में ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको बुक्स में मिलेगा वो आपको लेक्चर में नहीं मिलेगा, और जो आपको लेक्चर में मिलेगा, जो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, वो आपको बुक्स में शायद ना मिले, ठीक है? तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन नॉट, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैं कभी एक चीज़ को वो नहीं कर सकता हूँ, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ मैं. सो इन माई स्पिरिचुअल करियर लास्ट 10 ईयर्स, एवरी डे आई हैव हर्ड लेक्चर्स एंड आई हैव रेड प्रभुपाद बुक्स. दैट्स हाउ यू नो आई कैन शेयर समथिंग, यू नो, व्हाटएवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई गुरुजन. ओके, सो हाँ, वन मोर थिंग. नाउ द सिंपल क्वेश्चन, व्हाई वी आर आस्क्ड टू चैंट द होली नेम एवरी डे? नॉट नेसेसरी. अजामिल ने नामाभास चैंट किया था, ओके, और उसको उसके सारे सिंस डिस्ट्रॉय हो गए थे. ही गॉट लिबरेटेड, ही डिड नॉट गो बैक टू गॉड. लेकिन सिर्फ नामापास करने से ही अचीव लिबरेशन. सोचिए शुद्ध नाम करने से क्या होगा. एंड जैसे मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु सेड इवन वन सिलेबल ऑफ द होली नेम चैंट प्योरली यू विल अटेन द फीट ऑफ कृष्णा. एंड इफ यू कमिट ऑफेंसेस मिलियंस ऑफ होली नेम्स मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स यू कैन नेवर अचीव द लॉर्ड. सो वाई आर वी चैंटिंग एवरी डे? बिकॉज इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द होली नेम ऑफेंस टू द होली नेम द रेकमेंडेड प्रोसेस इज वी हैव टू चैंट कंटिन्यूअसली द होली नेम. सो वेन वी आर चैंटिंग द होली नेम एवरी डे फॉर द एंटायर लाइफ टाइम इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यू आर नॉट गिविंग अप द होली नेम. सो कंटिन्यूस डज नॉट जस्ट मीन दैट 24 आवर्स वी हैव टू चैंट द होली नेम. इट कैन ऑल्सो मीन इन स्टेजेस. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस अनइंटरप्टेड. सो इट कैन बी एवरी डे ऑल्सो. सो बिकॉज वी आर कमिटिंग ऑफेंसेस वी आर चैंटिंग द होली नेम एवरी डे. इफ यू आर नॉट कमिंग ऑफेंसेस वन प्योर नेम सफिशियंट. वी डोंट हैव टू चैंट एवरी डे. एक्चुअली वी विल चैंट एवरी डे बिकॉज वेन यू चैंट शुद्ध नाम 24 आवर्स यू नो इंटरनली विल बी चैंटिंग द होली नेम ओनली. राइट. सो बिकॉज यू गेट टेस्ट फॉर होली नेम. सो बट दैट्स अ डिफरेंट रीजन फॉर चैंटिंग द होली नेम. राइट. सो दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So, else, you know, just chanting a syllable of the holy name, purely one can achieve perfection. If chanting was the only sadhana, why Prabhupada gave so many books? Prabhupada ne itna effort kyun liya? Itna austerity kyun kiya? Book translate karne mein, dene mein. Kyun itna mazduri ki unhone? So, you bol dete, are shastra mein likha hai? Hare naam, hare naam, hare naam, eva kevalam, kalo nasti, eva nasti. Just chant hari name. Actually, uske liye guru ki bhi zarurat nahi hai. You just refer to Shastra. But does not happen like that. So there is a systematic approach. You know, we have to chant the holy name purely. So for that, we require Guru, Sadhu, Shastra. So same can be commented about the conflict between hearing and seva also. See, now my point is that so kabhi kabhi aisa hota hai ki devotees jo hote hai, wo seva ko jyada mahatva dete hai. फिजिकल सेवा हो या कोई भी तरीके का सेवा और हियरिंग को कॉम्प्रोमाइज करके. लेकिन वो गलत है और ये आचार्य का रियलाइजेशन है और ये प्रभुपाद जी का रियलाइजेशन है और ये हमारे गुरुजन का भी रियलाइजेशन है कि भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया कि सबसे पहले आता है हमारे भक्ति में हेल्थ. हेल्थ ठीक नहीं होगा तो हम लोग साधना कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है. और साधना ठीक नहीं होगा ना तो सेवा भी नहीं कर सकते बराबर से क्योंकि हेल्थ साधना और उसके बाद सेवा आता है एंड में. सो पहले सब डिवोटी का प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो हेल्थ के ऊपर होना चाहिए. उसके बाद साधना के ऊपर होना चाहिए. अगर आपका साधना मतलब साधना में चैंटिंग के साथ में हियरिंग और रीडिंग दोनों आता है वो आपका अगर ठीक नहीं चल रहा है तो आप अगर उसको कॉम्प्रोमाइज करके सेवा कर रहे हो तो फिर क्या होगा. इन ऑर्डर टू डू सेवा इफेक्टिवली वन हैज टू हैव प्रॉपर नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन. अदरवाइज सेवा विल बी डन विद ऑफेंसेस immaturity and with a desire for name and fame. So immaturity ka seva matlab you will not be able to know what are the Vaishnava dealings. Authority ke paas kaisa seva karna hai, kisko commitment ke saath karna hai, kiska loyalty ke saath karna hai seva. Aur hum log sabko to please nahi kar sakte, sabke under seva nahi kar sakte. We are not unlimited like Krishna, we are limited. So we can only serve few devotees and we can only follow some. सो नाउ लॉयल उसको लॉयल बन के हमको सर्व करना है. सर्व कैसा करना है, सर्व हमको कैसा करना है वो भी हमको पता होना चाहिए. जैसे मैं बता रहा था डिस्क्रिमिनेशन कि आपके सीनियर है, सुपीरियर है, उत्तम अधिकारी है, उसको कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, सब है. तो डिटेल्स के साथ मतलब ये सब हमको पता होना चाहिए और जो भाव है हमारा भी वो भी प्योर होना चाहिए कि ओनली रीजन इज टू सर्व इज टू गेट मोर सर्विस एंड टू प्लीज द लॉर्ड. That should be the only motivation without any tinge of selfish desires. Anya bilasita sunyam jnana karmadya navritam anukuliyena krishnanushilanam bhaktir uttama. So Rupa Goswami very elaborately explains this verse in the Bhaktirasamrita Sindhu that without the motivation of karma and jnana, without having any other desire than to serve Krishna, one has to perform continuous and uninterrupted devotional service. Anukul, favorable obviously. And it should be anu. Anu means continuous. So it should be continuous. It cannot be like, you know, in breaks. It should be continuous. Devotion has to be continuous. That is uttama bhakti. So Srila Prabhupada wanted both internal cultivation, development and seva to go parallel. See, now one more thing, please try to understand. I'm not saying that we should not focus on seva. In fact, seva is the goal. Because, you know, ultimately we want to do seva only for the Lord. But please understand, as long as we are conditioned, we require sadhana to properly keep in track with our services in our offenseless spirit and mood. Okay? So that is the reason, sadhana. Now, see, why every day? Why you have to hear and read every day? Simple, because Kaliyug Jeev, they forget every day. See, just as Prabhuji was saying, no, that he read Prabhupada books, but he has forgotten. It is obvious. Aapko, suppose aap Bhagavatam agar padhte ho, to aapke speed ke hisab se, it can take up to like 2 years, and it can take up to 6 years or 10 years also. Now you tell me one thing. Even after 2 years also, if you read, you know, next time also you read Bhagavatam, what are you going to remember? Going to forget. Right? So it's very important actually that we hear and read every day. So His Holiness Radhanath Maharaj, you know, in one lecture he said, if we don't hear, read every day, a time will come when we'll feel deity worship is a burden and we'll lose taste for chanting and service also. Okay, so from whom we hear is also very important. That's another subject matter. But we don't have time, so I'll just go quickly. Challenges to read Prabhupada books. So these are, you know, I think the most frequent challenges every devotee must be experiencing. No time. Jiske paas time nahi hai, usko hum log kuch nahi bol sakte. There is no argument, there is no reason. We can convince them. Agar aapne decide kar liya, aapke paas time nahi hai, lekin please ek cheez dhyan rakhna. Prabhupada ne apna time aapke liye diya hai. Unhone apna heart aapke liye diya hai. So give 15 minutes of your time to Prabhupada every day. Okay. Distracted. Distracted matlab, you know, you are distracted by various things in the material world, by commitments, social gatherings, functions and all these things. So you're not able to focus. Extremely repetitive, philosophical, basic, unorganized. And also if you want to read other books. So these are the challenges and we'll see how to overcome these challenges. So be a sage page by page. This is the trademark of Vaisheshika Prabhu, you know, our Transcendental Book Distribution Acharya. So a very advanced Vaishnav, senior Vaishnav, and he has given this method, simple method. Be a sage page by page. That don't set for higher goals. Don't target higher goals. Go very slowly, gradually. Slow and steady will win the race. Okay? So if you are, so now, how many of you can read Prabhupada books for half an hour every day? 1 hour? Right. Okay, maybe some devotees are not able to read even half an hour. So go for 15 minutes in the beginning. Give only 15 minutes every day to Prabhupada's books. Don't set any higher standards. Time set kar lijiye. Jitna bhi verse hua, jitna bhi slok hua, jitna bhi, you know, hua, it's okay. 15 minutes chalu kar dijiye aap. Just start immediately. But think on a long term basis also, whether you'll be able to sustain and maintain that steadiness in your reading. तो उसके हिसाब से आप सेट कीजिए टारगेट. सो बी एस एच पेज बाय पेज. सो रीच, अगर आप एक पेज भी पढ़ते हो एवरी डे देन ऑल्सो इट इज ओके. गो हैड, बट गो हैड. वेरी इंपॉर्टेंट एट मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, गिव योर 15 मिनट्स टू प्रभुपाद. देन उत्साह, निश्चय, धैर्य, नेक्टो इंस्ट्रक्शन थर्ड वर्स. एंथुजियाजम, ऑब्वियसली डिवोटीज आर समटाइम्स आर ओवर एंथुजियास्टिक. ओके, इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट, रूप गोस्वामी सेज धैर्य इज रिक्वायर्ड, पेशेंस, हैव पेशेंस. कोई भी किसी का भी फ्रूट जो है वो इमीडिएटली नहीं मिलता है, मेहनत करने के बाद मिलता है. राइट? सो हैव पेशेंस टू रीड प्रभुपाद बुक्स एंड बी डिटरमाइंड. सो रीड एवरी डे विथ एंथुजियाज्म, बट नॉट ओवर एंथुजियाज्म. बिकॉज ओवर एंथुजियाज्म में आप लोग कभी कभी क्या होगा, आप लोग ज्यादा पढ़ने जाओगे लेकिन आप वापस डाउन हो जाओगे. सो प्रभुपाद सेज इन वन लेटर टू वन डिसाइपल दैट चैंटिंग 16 राउंड्स इज गुड, ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज बट नेवर डिक्रीज. वन शुड नेवर गो डाउन बिलो देयर minimum standard. So one has to set minimum standard. Okay. So this is a short way to succeed in spiritual life, in reading Prabhupada's books. So because, you know, it's a simple thing. We can't purchase Krishna. Aapne agar 100 mala bhi ghuma diya, to Krishna aapke saath appear to nahi hone wale. Right? So finally it is all up to Krishna. We cannot demand from him also. Whatever we are doing, Krishna, maine itna kiya, to abhi terko to itna karna hi padega mere liye. है ना, मैं इतना श्रद्धा के साथ पूछ रहा हूँ, अभी तो कुछ यू हैव टू गिव मी प्रेमा, यू नो सीधा जंप मारना है. सो नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? सो एटलीस्ट 50 मिनट्स एवरी डे. द मूड हैज टू बी ऑफ प्योरिफिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर. सो वेन यू रीड प्रभुपाद बुक्स, वी हैव टू अप्रोच प्रभुपाद बुक्स विद द स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, दैट प्रभुपाद प्लीज गिव योर मर्सी, वी डोंट नो एनीथिंग एंड काइंडली डिस्ट्रॉय अवर इग्नोरेंस. प्योरिफिकेशन, दैट वी वॉन्ट टू बी प्योरिफाइड, we want to attain knowledge so that we can practice that knowledge and we can get purified, and then finally surrender to Guru and Krishna. Okay, so Shvetavastra Upanishad 6.23, you know, which I already mentioned, simultaneously Guru and Krishna, these are important. Seeking transformation is more important than information. Most of the devotees, they commit this mistake that they are always trying to seek information, something which is very interesting, something which is not heard of. I want to hear something. But that's the greatest mistake, because you will go out of the loop. And then obviously, you know, there is a chance that you might go and join some other sampradaya also. You might be deviated from that. So it is very important that the mood of reading Prabhupada's book should be to transform. We want to transform. In one letter, Prabhupada says to one disciple that a devotee should transform. Otherwise, what is the use? In one purport also, Prabhupada mentions about that. Okay, so transformation has to be there. No information. Make it as the highest priority in your spiritual life. Unless and until you make that highest priority, you are not be able to read Prabhupada's books every day. You think this is the most important service of my life. If you are not reading Prabhupada's books till now, you have to decide today that this is the most important service in my life. Everything else is secondary. What is the use of going to Vrajmandal Parikrama? What is the use of serving devotees? If you cannot understand what your guru has given to you, and as a matter of gratitude, you don't give back to the guru. A simple, basic thing, you know. If you don't understand, whatever you are doing, external things, superficial. So try to please the guru first by reading his books. Make it the highest priority immediately. And then other services will follow. So take guidance of your, you know, guides, mentors or gurus, you know, to help you to balance everything. Try to read in the order that Prabhupada recommended. The Bhagavad Gita, Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, then Srimad Bhagavatam, then Chaitanya Charitamrita. You know, the four. Now Prabhupada says, see, if the devotee do not have time for any other books, these four books are sufficient to take us back to Godhead. Bhagavad Gita, Nectar of Devotion, teachings of Lord Chaitanya, and Srimad Bhagavatam. If a devotee reads these four books, only these four books, they can also go back to Godhead, because everything is there in these four books. Okay, so these four books are sufficient. In association, without association also. See, in association becomes very simple. So initially you need that drive and motivation. But then finally you have to also read without association. So wherever you are, without dependence, you can also continue to read Prabhupada's books. Some great examples in our movement. His Holiness Radhanath Maharaj was once asked by a devotee if he read other books. And he said, only after reading 40 hours of Prabhupada's books, I will read 1 hour of different books, other books. His Grace Dut Karma Prabhu took a vow to read all four books that we mentioned every year. That means he has read them over 40 times now. Dut Karma Prabhu, the archaeologist, the Prabhupada disciple. His Holiness Prahlad Anand Maharaj has read Bhagavad Gita, Prabhupada's Bhagavad Gita, 150 times. Can we read books by other acharyas? Well, Prabhupada gave many references that we can, and obviously allowed, because as a acharya, he cannot say that, well, you cannot read. Then it's an offense to his guru parampara. So obviously Prabhupada did say, yeah, you can read. It's not mandatory. Okay. Now, Prabhupada also said in some letters and in some teachings that first assimilate what I have given to you. If you do not read my books first, then forget about reading other books. First, assimilate what I have given. That means, first read Prabhupada books. Okay. And then later on, so Prabhupada says, but encourage to dive into the works of acharyas if we have the capacity and greed for it. So if we read other acharya works, we should never stop reading Prabhupada's books along with it. See, now, he not only wanted his books to be read once, he wanted it to be read over and over again. So we have to remember one thing, that even if we read other Acharya works or other books, we should never stop Prabhupada books. Read Prabhupada books for 15 minutes, other 15 minutes read other Acharya works. Whatever, how much time you have. 1 hour if you are reading, you know, you have time, then half an hour for Prabhupada, half an hour for Acharyas. But never give up Prabhupada books. It should, these other books, they should never replace Prabhupada books. Okay? Very important principle. Otherwise, you will get deviated. You will get carried away by the instruction of other Acharyas. You will not understand what is the, what are you supposed to follow. Okay? So this is very important. And then to do this, one must be very cautious and careful. One must start and end with Srila Prabhupada's books. And how to do this? Narahari Sarkar explains in his Krishna Vannamrit, verses 42 to 58, wherein he says, so very important, please everyone hear attentively. One may listen from the mouth of other great advanced Vaishnavas and understand the special instructions. However, thereafter the disciple must go to his spiritual master for his confirmation of those instructions. A faithful son goes out to earn money, then brings the wealth gained to his father, then later asks for some allowance from the father. And whatever he receives from the father, he is entitled to spend for his own enjoyment. If a son earns money but does not give it to his father, instead directly enjoys the wealth, he is considered to be a fallen son and sinful person. Similarly, a disciple may hear some instructions from another advanced Vaishnava, but after gaining that good instruction, he must bring it and present it to his own spiritual master. After presenting it, he should hear the same teachings from his spiritual master with appropriate instructions. A disciple who listens to the words of other Vaishnavas, even if their instructions are proper and true, but does not reconfirm those teachings with his own spiritual master, and instead directly, personally accepts those instructions, is considered a bad disciple and a sinner. In any case, one should not disobey the instructions of the spiritual master. So, the culmination is that one has to finally follow the instructions of one's own Gurujan, the Diksha and Siksha Guru only. Even if you hear from advanced Vaishnavas, but you have to filter it by the instructions of your own Gurujan. Srila Prabhupada's books are like doorway by going through which we may come to the writings of previous Acharyas. His books give us access to previous Acharyas. If you read Prabhupada's books in the purports, he will reference to many, many Acharya works. And he will also encourage to read that. But it should be done properly. Ultimately, all of them, today in the market, there are many, many traditions, translations of works or of previous Acharyas. Ultimately, all of them are due to Prabhupada's books. Right? Why? Because Prabhupada is the only one who has spread Krishna consciousness throughout the world. So, whoever is translating Prabhupada's works also, finally has got connected to Prabhupada's lineage in some way, and he's translating. Because who has created devotees? Who had made devotees? It is Prabhupada who actually spread. And because of Prabhupada, the glories of the Holy Name spread throughout the world. So he's a Jagat Guru, right? So obviously, if other Acharya works are also translated, that is also credited to Prabhupada only. Okay? In addition, Prabhupada teachings are relevant for today's generation and for the next 10,000 years. So any conflict in his following instruction should be filtered out, and ultimately we have to follow Srila Prabhupada. So from wherever, whichever source you are hearing, if there is a conflict, then finally you have to filter it with Prabhupada's instructions. Also note that theoretical knowledge can never cause the Lord to reveal himself, but rather it is only by pleasing one's Guru. It is Srila Prabhupada who is creating our qualification, recommending us to Krishna. Just by jumping over to him, to gain additional knowledge and showing off to others, will never attract the Lord mercy. They may receive name and fame, but will not attain Krishna. The process is receiving knowledge from Guru and apply it with attitude of service, surrender and submission to the Guru. We can't surrender and follow many, but only our own Gurujan. Jack of all, master of none. Does not apply, does not work. Right? So, this is the thing. One of the reasons Prabhupada gave more philosophical elaborate purpose is because Kaliyuga Jivas tend to forget very easily. So to keep us more grounded in philosophy and get thoroughly convinced that our bhakti becomes unmotivated, favorable towards the Lord and uninterrupted as enunciated by Rupa Goswami, and we don't take things cheaply and granted, and also we don't jump in the leelas of Radha and Krishna prematurely, without understanding the tattva siddhat behind the leelas, then and only then we'll be able to deeply appreciate the leelas of the Lord and also be qualified to relish and finally enter into it. Most importantly, we have to serve at the end. So our reading of these books shouldn't consume most of the time that we don't have any time for serving. Okay? So final goal is service only. Please remember. But we have to be thorough with the Siddhant. This is the ultimate goal of our sadhana and it needs to be balanced. So the mercy that follows, just give me 5 minutes. I will wind up this. The mercy that follows, steadiness in bhakti, taste, enthusiasm. If you attain steadiness in your spiritual life, you have got the key to spiritual life. You are going back to Godhead for sure. Yeah, so steadiness is actually the key point. Okay. Somehow if you attain this nishta stage, because nishta is basically you are crossing over anartha nivritti and coming to steadiness. This steadiness is very difficult. Krishna does not give so easily. So this steadiness can come when you read Prabhupada's books. The mercy that follows, you know, that is steadiness. When you start reading Prabhupada's books every day, single day, make it a sadhana and a habit, you will become steady in everything. Chanting, reading, seva, whatever it is. Plus you will deal with the proper consciousness also. You get a lot of mercy from Prabhupada. Intelligence. Prabhupada says, intelligence is sharpened by reading the shastras regularly. So it is obvious, you know, you can experiment that. When you read shastras regularly, you know, especially your own Gurujan shastra, your intelligence is sharpened very deeply. You can remember things a lot, you know, like way long back. And you can also present it very nicely, systematically. Focus. You become focused. So Vishwachak Thakur says in Bhagavad Gita commentary that, you know, Vyavasai Atmika Buddhir Ekai Kuru Nandana, that the goal of a disciple should be to become the loyal servant of the spiritual master, and the instruction of the guru should become the life and soul for the disciple. So this focus will also come, you know, the one-pointed attention, which is also the cause for Raganuga Bhakti. Ragmarg is actually one-pointed, one center keval bhakti, you can say, you know, it is one centered attention towards the lotus feet of Guru. Then this also focus will develop. Special protection and mercy of Prabhupada will also come. Prabhupada will specially protect you if you read his books. So you might have some experiences of, you know, going to the material world and bewildered, you know, getting bewildered sometime, but Prabhupada will protect you for that. So Prabhupada said, 16 rounds if you chant every day, follow the regulative principles, there is no power in the world which can cause you to fall down. Okay, so now what to speak of reading Prabhupada books? Prabhupada will give special protection and mercy. One can experience and relate with Prabhupada's ecstasy also. You know, you will also start feeling ecstasy towards Krishna consciousness and Prabhupada's purpose, you know, that will connect you. You know, you will start relating and you will also get some kind of ecstasy, you know, which is obviously not, you know, that on the ecstasy of bhava stage, but quite relatable. You'll experience bliss when you start reading Prabhupada's purports. And you can obviously, the question is that how do we connect with Prabhupada? He's not there. How do we associate with Prabhupada? Prabhupada said, you can associate with me through my books. So very intimately, you actually get connected to Prabhupada. So you will never feel Prabhupada is lost. That can happen only when you read Prabhupada's books. Okay. Empowered by Srila Prabhupada to contribute in wonderful ways. So you will be empowered to do wonderful services for the mission of Prabhupada. Get frequent help from Paramatma, which I have already explained. So this feature, if you want to experience, then you have to read Prabhupada's books. Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution Books Ki. Okay, so thank you very much devotees for joining. I had to rush, you know, because I think I covered a number of points in the beginning and I had no time for other points to elaborate on that. But next seminar will be on the glories of Srimad Bhagavatam from academic, spiritual and Shastri point of view. And the following seminar will be on the ways to distribute Srimad Bhagavatam sets. The practical way for one and all to distribute Bhagavatam sets. So if possible, please do attend. I hope that, you know, I have done justice to the topic at least to some extent. And my only intention is that all of you, each and every one of you, go home and decide that today we are going to start Prabhupada books even for 10 or 15 minutes also. One page also if you read, that will be my achievement. So, and I think that is the greatest return that I will get in this seminar. So I pay obeisances to each and every one of you. Thank you so much for your time. And hope to see you next time again. Thank you so much. Hare Krishna Dhanataram. Vaishnavarinda ki. Srila Prabhupada ki.
RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.